आगे सबक देखिए भाई, फइन उतिकतिल अमतु फी इद्दतिहा मिन तलाकिर रजईन इंतकलत इद्दतुहा इला इद्दतिल हराइरि लिकियामिन निकाह मिन कुल्ली वजहिन وَإِنْ أُعْتِقَتْ وَهِيَ مَبْتُوتَةٌ أَوْ مُتَوَفًّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَمْ تَنْتَقِلْ عِدَّتُهَا إِلَى عِدَّةِ الْحَرَائِرِ لِزَوَالِ النِّكَاحِ بِالْبَيْنُونَةِ أَوِ الْمَوْتِ. بھئی گزشتہ سبق میں ہم نے عدت کا باب شروع کیا تھا بھئی، اور صاحب ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ کوئی شخص جب اپنی بیوی کو طلاق دے، چاہے طلاق بائن ہو یا طلاق رجعی ہو، یعنی خاوند بیوی سے صحبت کر چکا ہو، تو چاہے وہ طلاق بائن دے چاہے رجعی دے، یا ان میں بغیر طلاق کے جدائی واقع ہو جائے، اور حال یہ ہے کہ یہ عورت آزاد عورت ہے جس کو حیض آتا ہے، تو اس کی عدت تین حیض ہیں، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، کہ وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہے وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، وہ اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں ثلاثة قروء، ان تین حیضوں تک بھائی. اور جس طرح یہ متعلقات کے اندر عدت ہے، اسی طرح اگر جدائی بغیر طلاق کے ہو، مثلا عورت کی طرف سے جدائی آئی ہے، تو اس صورت کے اندر بھی ان پر بھی یہی عدت واجب ہوگی، کیونکہ اس عدت کا مقصد جو ہے یہ رحم کی صفائی کو جاننا ہے، تو یہی علت وہاں بھی پائی جائے گی، کیونکہ وہ عورت جہاں جدائی بغیر طلاق کے آئی ہے وہاں بھی خاوند صحبت کر چکا ہے، تو وہاں بھی رحم کی صفائی کا جاننا ضروری ہے، تو اس پر بھی یہی عدت واجب ہوگی بھائی. اور پھر صاحب ہدایہ نے بتلایا کہ قرآن میں قروء کا لفظ آیا ہے، اور یہ ازداد میں سے ہے، یعنی اس کا معنی طہر بھی ہے اور اس کا معنی حیض بھی ہے، لیکن ہم نے اس کو حیض پر محمول کیا کہ عورت کی عدت تین حیض ہیں، جبکہ امام شافعی رحم اللہ نے اس کو طہر پر محمول کیا کہ عورت کی عدت تین طہر ہیں. لیکن پھر صاحب ہدایہ نے بتلایا کہ حیض پر اس کو محمول کرنا اولا ہے بھائی، یا تو اس لیے کہ قروء جمع کا لفظ ہے اور جمع کے افراد کم از کم تین ہوتے ہیں، تو قروء کا معنی حیض کے کریں گے تو پورے تین حیض عدت کے اندر آ جائیں گے، تو جمع پر عمل ہو جائے گا، اور اگر اس سے طہر مراد لیں اس قروء سے، تو پھر اس صورت کے اندر جس طہر کے اندر عورت کو طلاق دی گئی ہے امام شافعی رحمہ اللہ اس کو بھی عدت کے اندر شمار کرتے ہیں، تو ایک یہ والا طہر اور دو اگلے طہر، تو یہ تو پورے تین طہر نہ ہوئے، کیونکہ پہلے طہر کا کچھ حصہ گزر چکا تھا، تو جمع پر عمل نہ ہو سکے گا، تو لہذا حیض پر اس قروء کو محمول کرنا اولا ہے. یا دوسری وجہ انہوں نے یہ ذکر کی، کیونکہ یہ جو عدت کا مقصد ہوتا ہے وہ رحم کی صفائی کو جاننا ہے، اور اس کا پتہ حیض سے چلتا ہے، طہر سے پتہ نہیں چلتا. یا تیسری وجہ یہ ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ باندی کی عدت دو حیض ہیں، جب باندی کے اندر عدت حیض کے ساتھ شمار ہو رہی ہے، تو معلوم ہوا آزاد عورت کے اندر بھی عدت حیض کے ساتھ ہی شمار ہوگی بھائی. اور اگر عورت ایسی ہے کہ جس کو حیض نہیں آتا صغیرہ ہونے کی وجہ سے یا بڑی عمر والی ہونے کی وجہ سے، میں نے بتایا تھا کہ 50-55 سال کی عمر میں عورت کو حیض آنا بند ہو جاتے ہیں، اور اس کو آئیسہ کہتے ہیں. آئیسہ کا معنی ہے نا امید، یعنی اگر ابھی تک اس عورت کی اولاد نہیں ہوئی تو اب یہ اولاد سے مکمل مایوس ہے، اب اولاد ہونے کا امکان نہیں بھائی. تو لہذا اگر عورت ایسی ہے جس کو حیض نہیں آتا، یعنی چاہے صغیرہ ہے یا بڑی عمر والی ہے، 50-55 سال سے زائد عمر والی ہے، تو ان کو تو حیض آتا نہیں، تو ان کی عدت تین مہینے ہیں بھائی. اور اسی طرح وہ لڑکی جو عمر کے اعتبار سے تو بالغہ ہو گئی ہے لیکن ابھی اس کو حیض شروع نہیں ہوئے، میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ صاحبین کے نزدیک اگر لڑکی 15 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو شرعاً یہ بالغہ متصور ہوگی، اور اس پر تمام بالغوں کے احکام جاری ہو جائیں گے، اور جبکہ امام صاحب کے نزدیک بلوغت کی عمر 17 سال ہے، لیکن علماء نے صاحبین کے قول کو ترجیح دی ہے، तो अगर कोई लड़की 15 साल की उम्र को पहुंच गई है और अभी तक उसको हैज शुरू नहीं हुए तो इसकी इद्दत भी 3 महीनों के साथ शुमार की जाएगी भाई। और अगर वो औरत जिसको तलाक मिली है ये वो हामिला है तो उसकी इद्दत जो है वज़ए हमल है भाई, और अगर बांदी है तो उसकी इद्दत 2 हैज हैं भाई, और अगर बांदी को हैज नहीं आते तो फिर उसकी इद्दत 1.5 महीना है। वजह यह कि महीने की तो तंसीफ हो सकती है, अलबत्ता हैज की तंसीफ नहीं हो सकती, तो दूसरे हैज को भी पूरा कर लिया जाएगा, तो हैजों में इद्दत गुजारेगी तो 2 पूरे हैज, और अगर हैज नहीं आते बांदी को तो फिर उसकी इद्दत 1.5 महीना है भाई। और उसके बाद फिर साहिब हिदाया ने इद्दत वफात जिक्र फरमाई कि अगर आजाद औरत जो है उसके खावंद का इंतकाल हो जाए तो उसका इद्दत 4 माह 10 दिन है भाई, और जबकि बांदी की इद्दत निसफ होगी अगर उसके खावंद का इंतकाल हो जाए तो फिर बांदी की इद्दत 2 महीने 5 दिन होगी, और अगर वो औरत हामिला है जिसके खावंद का इंतकाल हुआ है तो उसकी इद्दत वज़ए हमल है भाई, उसकी इद्दत वज़ए हमल है। वजह यह कि कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वह उलातुल अहमाली अजलुहुन्ना अन यज़ना हमलहुन्ना, और हमल वालियों की इद्दत यह है कि वह हमल को जन्म दे दें, तो यहां मुतलकन हमल वालियों की इद्दत जो है वज़ए हमल को करार दिया गया है, यहां कोई फर्क नहीं किया गया कि यह आजाद होगी तो तब यह इद्दत है। तो मालूम हुआ कि औरत चाहे आजाद हो चाहे बांदी हो लेकिन अगर वो हामिला है खावंद की वफात के वक्त तो उसकी इद्दत वज़ए हमल है। और नीज ये आयत मुतलक है, इसमें यह भी नहीं जिक्र कि यह वफात की इद्दत है या ये तलाक वगैरह की इद्दत है। मालूम हुआ औरत को चाहे तलाक मिले चाहे खावंद का इंतकाल हो चाहे आजाद हो चाहे बांदी हो, अगर वो खावंद की वफात के वक्त या तलाक के वक्त हामिला है तो तमाम अहवाल के अंदर उसकी इद्दत वज़ए हमल है भाई, क्योंकि कुरान के अंदर मुतलक आया है भाई। और चुनांचे फिर हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल भी जिक्र फरमाया, वो फरमाते हैं कि ये जो सूरह निसाए कुसरा है यानी छोटी सूरत निसा है यानी सूरह तलाक, ये सूरह बकरा की आयत के बाद नाजिल हुई है, और सूरह बकरा की आयत के अंदर तो इद्दत 4 महीने 10 दिन जिक्र है लेकिन इसके अंदर इद्दत वज़ए हमल है। मालूम हुआ ये पहले हुक्म के लिए नासिख है भाई, तो हामिला की इद्दत हर हाल में वज़ए हमल ही होगी, चाहे इद्दत वफात है चाहे इद्दत निकाह है भाई। और उसके बाद फिर मसला जिक्र फरमाया साहिब हिदाया ने कि अगर एक औरत है उसका खावंद मरजुल मौत में मुबतला है और वो अपनी इस बीवी को तलाके बाइन दे देता है या 3 तलाकें दे देता है तो इसकी इद्दत 3 हैज हैं, लेकिन इसी दौरान इद्दत के अंदर ही खावंद का इंतकाल हो गया तो इस सूरत के अंदर ये औरत वारिसा बनेगी, क्योंकि वैसे तो तलाके बाइन वाली या 3 तलाकों वाली जो होती है वो खावंद की वारिसा नहीं बनती चाहे खावंद का इद्दत के अंदर ही इंतकाल क्यों ना हो जाए, लेकिन यहां मामला खास है कि यह शख्स मरजुल मौत में मुबतला हो चुका है और मरजुल मौत में तो बीवी का हक इसके माल के साथ मुतालिक हो गया है भाई, तमाम वारिसों का हक इसके माल के साथ मुतालिक हो गया है, उसके बाद यह बीवी को तलाके बाइन या 3 तलाकें दे रहा है। भाई अगर आपने तलाकें देनी ही थी तो आप सेहत की हालत में देते, अब जब आप मरजुल मौत में मुबतला हो गए अब आपका इंतकाल होने वाला है, बीवी वारिसा बनने वाली है, आपका माल उसकी तरह मुंतकिल होने वाला है, अब आप इस वक्त बिस्तर मार्ग पर बीवी को 3 तलाकें दे रहे हैं या तलाके बाइन दे रहे हैं, मालूम हुआ आप औरत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आप उसको वरासत से महरूम करना चाहते हैं, तो लिहाजा दिलों में बदगुमानी आती है। चुनांचे सहाबा का इस पर इजमा है कि मरजुल मौत के अंदर अगर कोई शख्स अपनी बीवी को तलाके बाइन या 3 तलाकें देगा और इद्दत के अंदर उसका इंतकाल हो गया तो वह औरत उसकी वारिसा बनेगी, मालूम हुआ वरासत के हक में निकाह को बाकी शुमार किया जाएगा। बात समझ में आ गई, वरना तो निकाह टूट चुका है, तलाके बाइन दी है या 3 तलाकें दी हैं लेकिन वरासत के हक में निकाह को बाकी शुमार किया जाएगा। तो लिहाजा अब एक औरत है और उसको खावन ने 3 तलाकें या तलाके बाइन दे दी मरजुल मौत के अंदर और फिर इसी इद्दत के अंदर खावन का इंतकाल हो गया, تو اب اس پر کون سی عدت آئے گی؟ تو طرفین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس عورت پر دونوں عدتوں میں سے جو لمبی عدت ہے وہ عدت اس کو گزارنا پڑے گی. یعنی یہ ایک تو عدت طلاق ہے تین حیض, اور دوسری طرف عدت وفات ہے. تو جو عدت لمبی ہوگی وہ اس کو گزارے گی اور عدتوں کے اندر تداخل ہو جائے گا, ایک عدت دوسری عدت کے اندر داخل ہو جائے گی. تو جب لمبی والی عدت گزارے گی تو چھوٹی عدت اس کے اندر ہی آ جائے گی. آپ کے ذہنوں میں اشکال آئے گا کہ بھائی تین حیض تو ڈھائی تین مہینے میں گزر جائیں گے, جبکہ چار مہینے دس دن یہ تو عدت لمبی ہے. تو مختصراً یوں کہہ دیا جاتا کہ یہ وفات والی عدت گزارے گی. تو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ دو عدتوں میں سے جو لمبی عدت ہے وہ عدت یہ عورت گزارے گی؟ میں نے آپ کو بتلایا کہ وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات عورت کا طہر لمبا ہو جاتا ہے, کئی کئی مہینے تک اسے حیض آتا ہی نہیں ہے. لہذا تین حیضوں کا تین مہینے میں آنا قطعی اور یقینی نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ تین حیض چھ مہینے میں پورے ہوں, ہو سکتا ہے یہ دس مہینے میں پورے ہوں. تو لہذا معلوم ہوا ان تین حیضوں کی عدت کے بھی طویل ہونے کا احتمال ہے. تو لہذا جو عدت لمبی ہوگی وہ عورت گزار لے گی, اور جب لمبی والی عدت گزارے گی تو چھوٹی عدت اس کے اندر آ جائے گی. تو یہ تو طرفین کا مذہب ہے, جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں, یہ عورت جو ہے اس کا نکاح ٹوٹ چکا ہے, یعنی اس کو طلاق بائن ملی ہے یا تین طلاقیں ملی ہیں, اور جب نکاح ٹوٹ جائے تو وہی عدت اس عورت پر لازم ہوتی ہے. یعنی عدت نکاح ہی اس پر لازم ہوتی ہے, عدت طلاق ہی اس پر لازم ہوتی ہے, اور وہ تو تین حیض ہیں. لہذا تین حیض ہی گزارے گی, وفات والی عدت اس عورت پر نہیں آئے گی, کیونکہ خاوند سے تو رشتہ نکاح پورے طور پر ٹوٹ چکا ہے طلاق بائن یا تین طلاقوں کی وجہ سے. ہاں البتہ وہ فرماتے ہیں کہ وراثت کے حق میں اس نکاح کو باقی شمار کیا جائے گا صحابہ کے اجماع کی وجہ سے, جبکہ باقی چیزیں یعنی عدت وغیرہ کے حق میں اس نکاح کو باقی شمار نہیں کیا جائے گا. جب نکاح باقی نہیں تو لہذا اب خاوند کا انتقال بھی ہوا, بھائی وہ تو اجنبی ہو چکا ہے, اجنبی کے انتقال سے تو عورت پر عدت وفات نہیں آتی. بھائی نیز امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اس مریض کی بیوی کو قیاس کیا تھا مرتد کی بیوی پر, کہ جیسے یہ مریض کی بیوی وارثہ بن رہی ہے اسی طرح العیاذ باللہ کوئی شخص مرتد ہو جائے تو اس کی بیوی بھی اس کی وارثہ بنتی ہے, اور یہ مرتد اگر مر جائے یا اس کو قتل کر دیا جائے ارتداد کی وجہ سے تو بھی اس عورت کی عدت نہیں بدلتی. اس لیے کیونکہ اس عورت پر جو عدت آئی ہے وہ خاوند کے مرتد ہونے کی وجہ سے آئی ہے, خاوند کے انتقال کی وجہ سے اس پر عدت نہیں آئی. لہذا جب ارتداد کی وجہ سے اس مرتد کی بیوی پر عدت نکاح آ گئی, کیا آ گئی؟ عدت نکاح آ گئی, پھر عدت کے اندر خاوند مر گیا یا اس کو قتل کر دیا گیا تو بھی اس عورت کی عدت وفات کی طرف نہیں بدلتی. تو معلوم ہوا یہ مریض کی بیوی بھی بالکل اس مرتد کی بیوی کی طرح ہے. جیسے مرتد کی بیوی کے اندر نکاح ارتداد سے ٹوٹ گیا تھا اور جو عدت ایک دفعہ آ گئی وہی عدت رہے گی, اب بیچ میں خاوند کا انتقال بھی ہو گیا اب وہ عدت بدلے گی نہیں. جبکہ یہاں پر بھی اسی طرح ہے, مریض کی بیوی پر طلاق کی وجہ سے ایک عدت آ چکی ہے, اب خاوند کا انتقال بھی ہو جائے تو عدت بدلے گی نہیں بھائی. اور جیسے مریض کی بیوی وارثہ بن رہی ہے اسی طرح مرتد کی بیوی بھی وارثہ بن رہی ہے, تو دونوں صورتیں بالکل ایک جیسی ہیں. تو جب مرتد کی بیوی کے اندر بال اتفاق عدت نکاح ہے تو یہاں اس مریض کی بیوی میں بھی عدت نکاح ہونی چاہیے. اور پھر صاحب ہدایہ نے طرفین کی طرف سے دلیل ذکر فرمائی تھی. طرفین فرماتے ہیں کہ جب مریض کی بیوی میں اس نکاح کو وارثہ ہونے کے حق میں باقی شمار کیا گیا, یہ عدت کے اندر خاوند کا انتقال ہو جائے تو یہ وارثہ بنتی ہے, تو جب وارثہ ہونے کے حق میں نکاح کو باقی شمار کیا گیا تو عدت کے حق میں بھی اس نکاح کو باقی شمار کیا جائے گا بطور احتیاط کے. بھائی وجہ یہ کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ جو عدت ہے یہ شک کی وجہ سے بھی ثابت ہو جاتی ہے, جبکہ وارث ہونا یہ تو شک کی وجہ سے ثابت نہیں ہوتا. تو جب اس عورت کے وارث ہونے کے اندر نکاح کو باقی شمار کیا گیا ہے, یعنی وہ چیز جو شک سے ثابت ہی نہیں ہوتی, جب اس کے حق میں نکاح کو باقی شمار کیا گیا ہے تو اس عدت کے حق میں بھی اس نکاح کو باقی شمار کیا جائے گا जो शक की वजह से भी साबित हो जाती है। तो लिहाजा इस औरत पर दो इद्दतों में से जो लंबी इद्दत है वो आएगी भाई। और फिर साहिब हिदाया ने इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के कियास का जवाब भी दिया था। पहला जवाब इनकारी दिया कि हमें आपकी ये बात तस्लीम ही नहीं है कि मुर्तद की बीवी पर इद्दत निकाह आएगी, बल्कि वहां पर भी तरफेन इख्तिलाफ करते हैं। वो फरमाते हैं दोनों इद्दतों में से जो लंबी इद्दत है वो औरत गुजारेगी। और दूसरा जवाब तस्लीमी दिया था कि मुर्तद की बीवी के अंदर बिल इत्तेफाक इद्दत निकाह ही आएगी, इद्दत वफात नहीं। वजह यह कि वहां पर निकाह को बाकी शुमार नहीं किया गया वारिसा होने के लिए। वहां पर मुर्तद की बीवी में निकाह को बाकी शुमार नहीं किया गया वारिसा होने के लिए, जबकि मरीज की बीवी में निकाह को बाकी शुमार किया गया वारिसा होने के लिए। तवज्जो है। तो मुर्तद की बीवी के अंदर वारिसा होने के लिए निकाह को बाकी शुमार नहीं किया गया, और जो मुर्तद की बीवी वारिसा बनती है वो इस वजह से नहीं बनती कि उसके निकाह को बाकी शुमार किया गया है, बल्कि उस वारिसा होने की निस्बत वक्त इर्तेदाद की तरफ होती है कि जिस वक्त खावन मुर्तद हुआ तो वो मौत हुक्मी है, यानी मौत का हुक्म लगा दिया जाता है। तो जब खावन पर मौत आ गई तो बीवी क्या बनती है? वारिसा। तो लिहाजा जो मुर्तद की बीवी वारिसा बन रही है वो इस वजह से नहीं कि वारिसा होने के हक में उसके निकाह को बाकी शुमार किया गया है, बल्कि इस वजह से वारिसा बन रही है कि इस वारिसा होने की निस्बत इर्तेदाद के वक्त की तरफ की जाएगी, इर्तेदाद के बाद की तरफ निस्बत नहीं की जाएगी, क्योंकि इर्तेदाद के बाद तो वो शख्स काफिर हो चुका है। और जब दीन मुख्तलिफ हो, एक शख्स मुसलमान हो और दूसरा काफिर हो, तो फिर वो एक दूसरे के वारिस नहीं बनते भाई। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। फइन उतिकतिल अमतु फी इद्दतिहा मिन तलाकिन रजईयिन इंतकलत इद्दतुहा इला इद्दतिल हराइर। भाई अब साहिब हिदाया कुछ वो मसाइल जिक्र फरमाएंगे जहां औरत की इद्दत बदलती है भाई, जहां औरत की इद्दत एक इद्दत से बदलती है दूसरी इद्दत की तरफ। जैसे एक सूरत पीछे जिक्र हो गई गुज़श्ता सबक में कि अगर मुतल्लक़ा रजईया है और इद्दत के अंदर खावंद का इंतकाल हो जाए तो उस पर बिल इत्तेफाक वफात वाली इद्दत यानी 4 महीने 10 दिन आ जाएंगे। पहले उसकी इद्दत क्या थी? 3 हैज। और इद्दत के अंदर खावंद का इंतकाल हुआ तो उसकी इद्दत बदल गई इद्दत वफात की तरफ 4 महीने 10 दिन। तो अब इसी तरह की कुछ जगह बयान फरमाएंगे जहां औरत की इद्दत बदलती है भाई। पहली सूरत जिक्र कर रहे हैं, कहते हैं फइन उतिकतिल अमतु फी इद्दतिहा मिन तलाकिर रजईयिन इंतकलत इद्दतुहा इला इद्दतिल हराइर। सूरत मसला यह कि एक बांदी है, उसको खावंद ने तलाक दे दी और यह इद्दत गुजार रही है। बांदी का आका ने किसी से निकाह करवाया हुआ था और खावन ने उसको तलाक दे दी। ये औरत जो है, ये जो बांदी है, ये अपनी इद्दत गुजार रही है। इसी इद्दत के दौरान इसके आका ने इसको आजाद कर दिया जी। तो पहले तो ये बांदी थी और बांदी की इद्दत कितनी है? 2 हैज। लेकिन अब ये आजाद हो गई है, लिहाजा अब ये 3 हैज गुजारेगी। वजह यह कि निकाह मौजूद है, खावन ने कौन सी तलाक दी है? तलाक रजई दी है और वो इद्दत गुजार रही है और निकाह पूरे तौर पर कायम है तलाक रजई के अंदर। तो जब निकाह पूरे तौर पर कायम है और इस दौरान वो आजाद हो गई तो अब उस पर आजाद औरतों वाली इद्दत आएगी। तवज्जो है। बात शायद अभी भी आप पर वाजे न हुई हो कि किस तरह इसकी इद्दत बदल रही है। भाई देखो, जब तलाक रजई हो तो निकाह बाकी होता है तो उसकी वजह से तो इद्दत बदल सकती है, लेकिन अगर तलाक बाइन आ जाए या 3 तलाकें आ जाएं या खावंद का इंतकाल हो जाए, फिर याद रखो इद्दत लाजिम हो जाती है। तलाक बाइन में और 3 तलाकों में चूंकि निकाह टूट गया, जब निकाह पूरे तौर पर टूट गया तो जो इद्दत आ गई अब वही गुजारना पड़ेगी, अब दोबारा बदलेगी नहीं। तलाक की वजह से 3 हैज इस औरत पर लाजिम हो गए हैं। अब इस दौरान अगर खावंद का इंतकाल भी हो जाए तो इद्दत नहीं बदलेगी क्योंकि निकाह पूरे तौर पर टूट चुका है। इसी तरह अगर खावंद का इंतकाल हो जाए تو اس وقت بھی جو عدت عورت پر لازم ہو گئی وہی گزارنی پڑے گی، وہ عدت دوبارہ بدلے گی نہیں. توجہ سے سنو، خاوند کے انتقال یا نکاح کے پورے طور پر ٹوٹنے کی وجہ سے جو عورت پر عدت آتی ہے وہ لازم ہو جاتی ہے، وہ دوبارہ بدل نہیں سکتی بھائی. البتہ طلاق رجعی کی وجہ سے جو عدت آئی ہے، چونکہ وہاں تو ابھی نکاح باقی ہے لہذا وہاں عدت بدل سکتی ہے. تو یہ عورت باندھی تھی، خاوند نے اس کو طلاق دے دی، اس کی عدت کتنی؟ دو حیض، اور اس عدت کے دوران ہی اس کو آزاد کر دیا گیا، تو اب نکاح پورے طور پر موجود ہے، تو لہذا اب اس کی عدت جو ہے وہ آزاد عورتوں والی عدت کی طرف بدل جائے گی. اب دو حیضوں سے یہ بائنہ نہیں ہوگی بلکہ اب تین حیض گزارے گی تو پھر یہ بائنہ ہو جائے گی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ جبکہ اس کے مقابلے میں ایک باندی ہے، اس کے خاوند کا انتقال ہو گیا، اس کی عدت کتنی؟ دو ماہ پانچ دن. دو ماہ پانچ دن، کیونکہ باندی کا حکم نصف ہوتا ہے آزاد عورت کے مقابلے میں، تو یہ باندی دو ماہ پانچ دن کی عدت گزار رہی ہے، اسی دوران آقا نے اس کو آزاد کر دیا. لیکن خاوند کی وفات کی وجہ سے جو عدت آئی تھی وہ کیا ہو چکی؟ لازم ہو چکی ہے، اب وہ بدلے گی نہیں. تو یہ بے شک آزاد ہو گئی ہے لیکن عدت وہی دو ماہ پانچ دن گزارے گی. یا خاوند نے اس باندی کو طلاق بائن دے دی ہے، جب طلاق بائن دے دی تو نکاح پورے طور پر ٹوٹ گیا. جب نکاح پورے طور پر ٹوٹ گیا اب اس عدت کے اندر اس کو آزاد کر دیا گیا، لیکن اب تو نکاح ٹوٹ چکا ہے اور نکاح ٹوٹنے کی وجہ سے جو عدت عورت پر لازم ہونی تھی وہ لازم ہو چکی ہے. اور وہ کون سی عدت تھی؟ وہ دو حیض تھے، وہ دو حیض تھے. تو اب اس دوران اگر اس کو آزاد بھی کر دیا جائے اب اس کی عدت نہیں بدلے گی. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو کہتے ہیں فَإِنْ اُعْتِقَتِ الْأَمَةُ فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍ، اور اگر آزاد کر دیا جائے باندی کو اس کی عدت کے اندر، مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍ، طلاق رجعی سے. کس چیز کی عدت گزار رہی ہے؟ طلاق رجعی والی، نکاح قائم ہے اور اس کو آزاد کر دیا گیا. تو انتقلت عدتها الى عدت الحرائر، تو منتقل ہو جائے گی اس عورت کی عدت آزاد عورتوں کی عدت کی طرف. لقیام النکاح من کل وجہ، کیونکہ نکاح قائم ہے ہر اعتبار سے. وَإِنْ اُعْتِقَتْ وَهِيَ مَبْتُوتَةٌ، اور اگر اس باندی کو آزاد کیا گیا، وَهِيَ مَبْتُوتَةٌ، اس حال میں کہ یہ مبتوتا ہے. تو یاد رکھو بتا یا بتو، بتن کا معنی ہے کاٹنا، کاٹنا. تو اسی سے بتا یا بتو، بتن سے اس میں مفعول ہے مبتوتا، یعنی جس کو کاٹ دیا گیا ہے، یعنی جدا کر دیا گیا ہے. تو مبتوتا وہ عورت ہے جس کو خاوند سے کاٹ دیا گیا ہے، خاوند سے الگ کر دیا گیا ہے، یعنی اس کو طلاق بائن مل گئی ہے یا تین طلاقیں مل گئی ہیں. تو یہ جس عورت کو طلاق بائن مل جائے یا تین طلاقیں مل جائے، یعنی جس کا نکاح پورے طور پر ٹوٹ گیا خاوند سے، اس کو مبتوتا کہتے ہیں بھائی. تو مبتوتا کا کیا معنی؟ کاٹی ہوئی، جدا کی ہوئی، یعنی یہ عورت خاوند سے جدا کر دی گئی ہے، یا یہ عورت یوں کہیں نکاح سے جدا کر دی گئی ہے، یا یوں کہیں کہ یہ عورت رجوع سے کاٹ دی گئی ہے. اب یہاں رجوع نہیں ہو سکتا، بات سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں وَإِنْ اُعْتِقَتْ وَهِيَ مَبْتُوتَةٌ، اور اگر باندی کو آزاد کیا گیا، وَهِيَ مَبْتُوتَةٌ، اس حال میں کہ یہ مبتوتا ہے، یعنی رجوع سے یہ کاٹ دی گئی ہے. او متوفن عنها زوجها، یا اس کا خاوند جو ہے اس کا انتقال ہو چکا ہے. لم تنتقل عدتها الى عدت الحرائر، تو اس باندی کی عدت آزاد عورتوں کی عدت کی طرف منتقل نہیں ہوگی. لزوال النکاح بالبینونۃ او الموت، اس لیے کیونکہ نکاح زائل ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے. بالبینونۃ، جدائی کی وجہ سے، او الموت، یا موت کی وجہ سے نکاح زائل ہو گیا. اور جب نکاح زائل ہو تو اس وقت جو عدت آتی ہے وہ لازم ہو جاتی ہے، وہ پھر بعد میں بدلتی نہیں ہے بھائی. وَإِنْ كَانَتْ عَائِسَةً فَاعْتَدَّتْ بِالشُّهُورِ. صورت مسئلہ یہ، ایک عورت ہے وہ پچاس پچپن سال سے زیادہ عمر کی ہے اور اس کے حیض رک چکے ہیں، اس کے حیض رک چکے ہیں، یہ عائسہ کہلاتی ہے. یہ عائسہ، تو یہ جو عائسہ ہے اس نے اپنی عدت گزار لی مہینوں کے ساتھ، اس کو تو حیض آتا نہیں ہے، تو اس کو خاوند نے طلاق دی تھی، تو اس نے اپنی عدت تین مہینے گزار لی ہے، اور پھر بعد میں کچھ عرصے کے بعد، چاہے سال بعد، دو سال بعد، پانچ سال بعد، پھر اس کو عورت کو حیض آنا شروع ہو گیا، तो याद रखो अब ये दोबारा हैज के साथ इद्दत गुजारेगी, चाहे जितने सालों के बाद भी दोबारा हैज शुरू हुआ, तलाक मिली थी 5 साल पहले और आज ये हैज को देख रही है, तो ये अब फिर हैज के साथ इद्दत गुजारेगी। भाई क्या वजह? कहते हैं वजह ये कि ये जो महीने हैं ये हैज के कायम मकाम हैं, जब हैज ना आता हो फिर महीनों के साथ इद्दत गुजारेगी, और इस औरत को तो हैज आ रहा है, मालूम हुआ इसकी इद्दत महीनों की तरह मुंतकिल नहीं हुई। जैसे देखो भाई, कोई शख्स बहुत बूढ़ा हो गया और कमजोर हो गया, अब वो रोजे नहीं रख सकता, तो इसको क्या कहते हैं? शेख फानी, यानी ये वो शख्स जो फना होने वाला है, मौत के करीब पहुंच चुका है। तो शेख फानी जो है, जो रोजे नहीं रख सकता, उसको फिदिया देने का हुक्म है कि वो हर रोजे के बदले फिदिया दे। भाई वो रमजान के रोजे तो नहीं रख सकता, तो फिदिया अदा करता रहे हर रोजे का, लेकिन उसमें याद रखो शर्त यह है कि मौत तक उसमें रोजे रखने की इस्तेतात और कुदरत ना आए। अगर वो शख्स, उसकी सेहत दोबारा ठीक हो गई और वो रोजे रखने पर कादिर हो गया, तो जो पीछे उसने जितने रोजों के फिदिया अदा किए थे वो रोजे अब इसको दोबारा रखने पड़ेंगे, वो फिदिया काफी नहीं, क्योंकि फिदिये के काफी होने के लिए शर्त थी कि मौत तक वो असल यानी रोजों पर कादिर ना हो सके, और वो तो बात पूरी ना हुई। भाई इसी तरह यहां ये जो औरत थी, इसने अपनी इद्दत महीनों के साथ पूरी कर ली थी, लेकिन इसके अंदर शर्त है कि ये महीने हैज के कायम मकाम तब बनेंगे जब मौत तक दोबारा हैज ना आए। भाई और यहां तो हैज दोबारा आ गया, लिहाजा मालूम हुआ यह महीने हैज का कायम मकाम नहीं है, असल पर जब यह कादिर हो गई तो असल के साथ ही उसको अदा करेगी। बात समझ में आ गई? देखिए भाई साहिब हिदाया इसको और अच्छे अल्फाज में जिक्र फरमाएंगे, कहते हैं वह इन कानत आयिसतन, और अगर ये मुतल्लका जो है वो आयिसा है, फातद्दत भी शुहूरी, तो इसने इद्दत गुजार ली महीनों के साथ, सुम्मा रअति दमा, फिर इसने बाद में किसी वक्त खून देखा, इन तकजमा मजामिन इद्दतिहा, तो टूट जाएगी वो जो गुजरी है इसकी इद्दत। भाई यानी वो इद्दत शुमार नहीं होगी, वह अलैहा अंतस्ता अनिफल इद्दत बिल हैयजी, और इस औरत पर वाजिब है कि वह नए सिरे से इद्दत गुजारे बिल हैयजी, हैजों के साथ। साहिब हिदाया अब इसका माना बयान करेंगे, यह तो मतन था, कहते हैं भाई खून देखने का यह मतलब नहीं है, थोड़ा सा खून इसने देख लिया तो आप फौरन हुक्म लगा दें कि अब इसको हैज गुजारने पड़ेंगे। भाई हैज आएंगे तो यह हैज गुजारेगी ना, तो सिर्फ खून देखने पर यह हुक्म नहीं लगाया जाएगा, बल्कि जब इसको आदत के मुताबिक फिर हैज आना शुरू हो जाए, जब पूरा हैज आदत के मुताबिक इसको आया, मालूम हुआ यह हैज है, फिर हम यह हुक्म लगाएंगे कि अब इसको दोबारा इद्दत गुजारना पड़ेगी हैजों के साथ। और अगर थोड़ा सा खून आया और फिर बंद हो गया तो फिर तो मालूम हुआ दोबारा हैज नहीं आए। भाई तो कहते हैं वह माना हो, और माना इस कौल का यह है कि इदा राति दम अलल आदती, कि जब इस औरत ने आदत के मुआफिक खून देखा, ले अन्नाउदहा युब तिलुल इयासा, इसलिए क्योंकि खून का लौटना यह बातिल कर देता है अल इयासा, इयास को, 50-55 साल की उम्र में औरत को हैज नहीं आता, इसको इयास कहते हैं, ना उम्मीद होना, बाबे समिया है, आयिसा ये असु इयासन फहुआ आयिसुन, तो कहते हैं लिअन औदहा युब तिलुल इयासा, इसलिए क्योंकि खून का दोबारा लौटना ये इयास को बातिल कर देता है, मालूम हुआ ये आयिसा नहीं है। तवज्जो है, ये आयिसा में या के नीचे जेर है भाई, आयिसतुन फाइलतुन, तो कहते हैं ली अन्ना औ दहा युब तिलुल इयासा, इसलिए क्योंकि खून का लौटना यह आयिसा होने को बातिल कर देता है, हुआ सहीह, यही कौल सहीह है, फजहरा अन्नहु लम यकुन खलफन, तो यह बात जाहिर हो गई कि महीना जो है वह हैज का बदल नहीं था, खलफ बदल को कहते हैं और खलीफा को कहते हैं, फजहरा अन्नहु लम यकुन खलफन, तो यह बात जाहिर हो गई कि यह जो महीना था यह हैज का बदल नहीं था, वहादा लि अन्न शर्त अल खलफियति तहक्कुकुल यासी, वहादा, और यह इस वजह से है, महीना हैज का बदल नहीं है ये इस वजह से कहते हैं वहादा, और ये इस वजह से लिअन्न शर्त अल खलफियति, इसलिए क्योंकि बदल होने की शर्त ये है तहक्कुकुल यासी के आयसा होना पाया जाए, वज़ालिक बिस्तिदामतिल अज्ज़ी इलल ममाती, इस्तिदामत का माना बरकरार रहना, वदालिक बिस्तिदामतिल आजजी, और वो आजजी का बरकरार रहना इलल ममाती मौत तक, आजजी का बरकरार रहना मौत तक, यानी ये औरत आजिज है, ये हैज के साथ इद्दत नहीं गुजार सकती क्योंकि इसको हैज आते ही नहीं भाई, तो ये आजजी है, लेकिन ये आजजी कब तक रहनी चाहिए, मौत तक रहेगी तो फिर ही महीना जो है वो हैज का कायम मकाम हो जाएगा। फिर तर्जमा देख लीजिए, वहादा लिअन्न शर्त अल खलफियति तहक्कुकुल यासी, और ये इसलिए है क्योंकि खलीफा होने की शर्त जो है वो आयसा होने का पाया जाना है, वज़ालिक बिस्तिदामतिल अज्ज़ इलल ममाती, और ये आयसा होने का पाया जाना ये आजजी के बरकरार रहने से होगा, इलल ममाती मौत तक, कल फिदियती फी हक शेख फानी, जैसे कि फिदिया जो है शेख फानी के हक में, उसके हक में फिदिया जो है ये रोजे का बदल होगा, लेकिन मौत तक आजजी रहनी चाहिए, मौत तक वो रोजे पर कादिर न हो सके भाई। वलौ हाजत हैज़तैन सुम्मा अयिसत तअतद्दु बिशुहूर, वलौ हाजत हैज़तैन, सूरत मसला ये, एक औरत है उसको खावंद ने तलाक दे दी और उसने हैजों के साथ इद्दत गुजारना शुरू की, एक या दो हैज गुजर गए और फिर हैज खत्म हो गए, आयसा हो गई, तो अब दो हैज तो गुजार चुकी है, तो क्या अब एक महीना और गुजार ले, अब तो महीनों के साथ इद्दत गुजारनी पड़ेगी, तो क्या एक महीना और इद्दत गुजार ले, कहते हैं नहीं, हैज असल है और महीना उसका बदल है, और कुछ इद्दत असल के साथ गुजारे और कुछ इद्दत बदल के साथ गुजारे, ऐसा नहीं हो सकता, दोनों को जमा नहीं कर सकते, एक है इद्दत में दोनों को जमा नहीं कर सकते, लिहाजा अब महीनों के साथ जब इसने इद्दत गुजारनी है तो पूरी इद्दत दोबारा गुजारेगी भाई। तो कहते हैं वलौ हाजत हैज़तैनी, और अगर औरत को दो हैज आए, सुम्मा अयिसत, फिर वो आयसा हो गई, तअतद्दु बिशुहूरी, तो ये इद्दत महीनों के साथ गुजारेगी, तहर्रुज़न अनिल जम्ई बैनल बदली वल मुबदली, बदल और मुबदल के दरमियान जमा से बचने के लिए, बदल और मुबदल को जमा नहीं किया जाएगा भाई। तो कहते हैं तहर्रुज़न अनिल जम्ई बैनल बदली वल मुबदली, बचने के लिए बदल और मुबदल के दरमियान जमा से, वल मनकूहतु निकाहन फासिदन वल मौतूअतु बिशुबहतिन, अच्छा भाई अब निकाह फासिद के अंदर क्या इद्दत होगी, यह किसी औरत से शुबा के अंदर वती कर ली गई, निकाह फासिद मैंने जिक्र किया था कि निकाह फासिद कह लें या निकाह बातिल कह लें एक ही बात है, और निकाह फासिद किसी शख्स ने किसी औरत से कर लिया, मसलन बगैर गवाहों के निकाह कर लिया, या उसकी इद्दत के अंदर निकाह कर लिया, या चौथी के होते हुए पांचवीं से निकाह कर लिया, या एक औरत के साथ निकाह मौजूद है और उसकी बहन के साथ निकाह कर रहा है, तो दो बहनों का निकाह में जमा करना लाजिम आएगा, तो ये सब निकाह फासिद हैं भाई, और निकाह फासिद का कोई हुक्म नहीं है। हां जब ये शख्स इस औरत से सोहबत कर लेगा, अब अहकाम आ गए, अब इस औरत को इसको पूरा महर भी देना पड़ेगा, और नीज अगर बच्चा पैदा हुआ उसका नसब भी इस आदमी से साबित होगा, वो बच्चा वलदुल जिना शुमार नहीं होगा भाई, और नीज इस औरत पर जुदाई के बाद इद्दत भी लाजिम होगी, उस इद्दत के बगैर ये आगे निकाह नहीं कर सकती। तो ये तो था निकाह फासिद, और मैंने आपको ये भी बतलाया था कि निकाह फासिद के अंदर भी जो वती की जाए वो भी वती बिशुबा ही है, वो भी वती बिशुबा ही है, कि इस शख्स ने शुबाए निकाह में वती कर ली है, इसका ख्याल था शायद मेरा निकाह हो चुका है, हालांकि इसने तो बगैर गवाहों के निकाह किया है, निकाह तो इसका नहीं हुआ, तो ये जो निकाह फासिद की वजह से जो वती करता है ये भी क्या है, वती बिशुबा है, यानी शुबाए निकाह की वजह से इसने वती कर ली, हालांकि हकीकत में तो निकाह नहीं हुआ भाई। और आपको साहिब हिदायत ने यह भी बतलाया था कि ममलिकत इस्लामिया के अंदर कोई भी सोहबत महर या हद से खाली नहीं होगी, जो शख्स भी सोहबत करेगा या तो वहां महर आएगा या वहां हद जारी होगी। और यहां हद तो जारी नहीं होगी क्योंकि शुबा आ गया, इनका ख्याल था हमारा निकाह हो चुका है तो लिहाजा अब महर देना पड़ेगा। तो निकाह फासिद कहें या निकाह बातिल एक ही चीज है, और निकाह फासिद के कोई अहकाम नहीं इल्ला ये कि जब खावन बीवी से सोहबत कर ले फिर इसके अहकाम आएंगे, फिर महर भी देना पड़ेगा, नसब भी साबित होगा बच्चे का और नीज औरत को इद्दत भी गुजारना पड़ेगी। जबकि बाज औकात वती बगैर निकाह के खावंद कर लेता है औरत से, वो भी वती भी शुबा है। मसलन एक शख्स का एक औरत से निकाह हुआ है, पहली रात जब खावन बीवी के पास जा रहा है तो औरतों ने उसकी दुल्हन के बजाय एक और औरत को वहां बिठा दिया कि देखो वो पहचानता है या नहीं पहचानता है, ये मेरी दुल्हन है। वो तो शख्स तो उसने तो उसको नहीं देखा हुआ था, वो नहीं पहचानता था, वो आया और उसने आकर इस औरत से सोहबत कर ली भाई। अब देखो ये भी वती भी शुबा है क्योंकि ये शख्स क्या समझा, ये मेरी बीवी है भाई। तो यहां निकाह फासिद भी नहीं है क्योंकि इसका निकाह तो किसी और से हुआ है, तो वती भी शुबा बगैर निकाह फासिद के भी हो सकती है और निकाह फासिद के साथ भी हो सकती है। तो अब अगर एक औरत ने निकाह फासिद किया था और उसमें उससे वती कर ली गई, या अब निकाह फासिद के बगैर ही किसी औरत से वती भी शुबा कर ली गई, तो उसके अंदर औरत पर इद्दत आएगी। तो कौन से इद्दत आएगी, अब वो बयान करने लगे हैं। कहते हैं वल मनकूहतु निकाहन फासिदं वल मौतूअतु बिशुबहतिन, और वो औरत जिसे निकाह फासिद किया गया है और इसी तरह वो औरत जिसे शुबा के अंदर वती की गई है, इद्दतुहुमल हैज़ु फिल फुरकति वल मौती, इनकी इद्दत जो है वो हैज हैं जुदाई में और मौत में, यानी खावन से जब जुदाई करवाएगा काजी या ये खुद एक दूसरे को छोड़ने का जब पक्का इरादा कर लेंगे तो फिर औरत हैजों के साथ इद्दत गुजारेगी। अगर हैज आते हैं, अगर हैज नहीं आते तो फिर महीनों के साथ इद्दत गुजारेगी। और अगर इस शख्स का इंतकाल हो गया तो इंतकाल की सूरत में भी इन पर इद्दत वफात नहीं आएगी बल्कि यही तीन हैज ही गुजारना पड़ेंगे। तो कहते हैं इद्दतुहुम अलहियज़ु फिल फुरकति वल मौती, इनकी इद्दत जो है वो हैज है जुदाई और मौत के अंदर, लिअन्नहा लितअर्रुफि अन बराअतिर रहमी, इसलिए क्योंकि ये जो इद्दत है ये रहम की सफाई जानने के लिए है, ये रहम की सफाई जानने के लिए है, लालि कजा हक निकाही, ये निकाह का हक अदा करने के लिए नहीं। याद रखो भाई, याद रखो, ये जो आजाद औरत पर इद्दत आती है खावंद की वफात की सूरत में, खावंद की वफात की सूरत में जो आजाद औरत पर या बांदी पर जो इद्दत आती है ये हक निकाह को अदा करने के लिए है। उलमा इसकी कई वजहें जिक्र फरमाते हैं, एक क्या है, हक निकाह को अदा करना है, और दूसरा निकाह की नेमत से औरत महरूम हो गई, खावंद का इंतकाल हो गया तो इजहार गम के लिए कि मैं निकाह जैसी नेमत से महरूम हो गई, तो शरीयत ने 4 महीने 10 दिन की इद्दत लाजिम की है। और ये जो निकाह फासिद वाली है या जिसके साथ वती भी शुबा की गई है, इनका तो निकाह ही नहीं हुआ था तो इन पर वफात वाली इद्दत तो नहीं आएगी। वो तो वो इद्दत तो किस लिए होती है, निकाह का हक अदा करने के लिए, या निकाह की नेमत से महरूम होने की वजह से, जबकि इनका तो निकाह ही नहीं हुआ लिहाजा इन पर वफात वाली इद्दत नहीं आएगी। तो कहते हैं लिअन्नहा लितअर्रुफि अन बराअतिर रहमी, इसलिए क्योंकि इनकी इद्दत जो है वो रहम की सफाई जानने के लिए है, लालि कजा हक निकाह, निकाह का हक अदा करने के लिए नहीं, वल हैज हुवल मुअर्रिफ, और हैज जो है वही पहचान करवाने वाला है, हैज ही पहचान करवाता है रहम की सफाई की, लिहाजा ये हैजों के साथ इद्दत गुजारेंगी। आगे देखिए वइदा मात मौला उम्मिल वलद अनहा औ आतकहा फइद्दतुहा सलासु हियज, अब उम्मे वलद की इद्दत बयान करने लगे हैं। उम्मे वलद वो बांदी जिसने बच्चे को जन्म दिया और आका ने कहा कि ये मेरा बच्चा है, आका ने करार कर लिया तो ये उसकी उम्मे वलद बन गई, और आका के मरने के बाद इसने हर हाल में आजाद होना है, इसका बच्चा इसकी आजादी का सबब बन गया। तो अब ये जो उम्मे वलद है इसके आका का इंतकाल हो गया, तो इंतकाल होते ही ये आजाद हो गई, तो अब ये कौन सी इद्दत गुजारेगी, तो याद रखो इस सूरत में ये आजाद औरत वाली इद्दत गुजारेगी, क्योंकि ये क्या हो गई है, आजाद है, हजा तीन हैज गुजारेगी, फिर ये जहां चाहे निकाह कर सकती है। या इसी तरह उम्मे वलद को आका ने मरने से पहले ही आजाद कर दिया, तो इस सूरत में भी वो तीन हैज ही इद्दत गुजारेगी। तो कहते हैं वैजा माता मौला उम्मिल वलद अनहा, और जब उम्मे वलद का आका उसको छोड़कर मर गया, और आतका या आका ने उसको आजाद कर दिया, फइद्दतुहा सलासुहियज़िन, तो इस औरत की इद्दत तीन हैज हैं। वकाल शाफिई रहिमहुल्लाह तआला रहमतन वासिअ हैज़तुन वाहिदा, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं इसकी इद्दत एक हैज है, लिअन्नहा तजिबु बिज़वाली मिल्किल यमीन। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये जो इद्दत वाजिब हुई है इस औरत पर, ये ज़वाले मिलके यमीन की वजह से वाजिब हुई है, मिलके यमीन यानी आका की मिल्कियत इस पर से खत्म हुई है। ये बात मैंने पहले भी जिक्र की थी कि अगर आका अपनी बांदी को बेचता है तो जो नया खरीदने वाला है, जो नया मालिक है इस बांदी का, उसके लिए यह बांदी हलाल होगी, लेकिन फौरन उसके लिए सोहबत करना जायज नहीं, बल्कि एक हैज इंतजार करना पड़ेगा। जब एक हैज बांदी को आ जाएगा, पता चल गया कि यह बांदी पिछले आका से हामिला नहीं, तो रहम की सफाई का पता चल गया, उसके बाद फिर वह नए आका के लिए सोहबत जायज हो जाएगी। और इसको कहते हैं इस्तिबरा, इसे क्या कहते हैं, इस्तिबरा यानी रहम की सफाई तलब करना, सीन तलब के लिए है भाई, तो रहम की सफाई को तलब करना। तो लिहाजा इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जैसे वो बांदी जिसको बेचा जाए वहां पहले आका की मिल्कियत खत्म होती है, लिहाजा वहां एक हैज गुजारना पड़ता है इस्तिबरा के साथ। तो यहां पर भी जब उम्मे वलद को आका ने आजाद किया या आका का इंतकाल हो गया, तो बांदी पर से मिल्कियत खत्म हो गई, और जब बांदी पर से पहले आका की मिल्कियत खत्म हो तो फिर वो एक हैज गुजारा करती है। तो लिहाजा ये औरत भी, ये उम्मे वलद भी एक हैज गुजारेगी। दलील समझ में आ रही है उनकी। तो कहते हैं वकाल शाफिई रहमहुल्लाह हैज़तुन वाहिदतुन, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इसकी इद्दत जो है एक हैज होगी, लिअन्नहा तजिबु बिज़वाली मिल्किल यमीनी, इसलिए क्योंकि जो उम्मे वलद है इसकी इद्दत वाजिब हुई है, बिज़वाली मिल्किल यमीनी आका की मिल्कियत के खत्म होने की वजह से, फशा बहतिल इस्तिबरा, तो ये इस्तिबरा के मुशाबे हो गई, और इस्तिबरा में तो एक हैज गुजारा जाता है, तो यहां भी एक हैज ही इस पर इद्दत होगी। वलना, अब हमारी दलील आ गई, वलना और हमारी दलील यह है कि अन्नहा वजबत बिजवालिल फिराशी, कि ये जो इद्दत उम्मे वलद पर वाजिब हुई है बिजवालिल फिराशी, ये जवाले फिराश की वजह से है, फअशबहा इद्दतन निकाही, तो यह इद्दत निकाह के मुशाबे है। मैंने आपको बतलाया था कि ये जो बीवी है ये खावन का फिराश है। फिराश, फिराश का माना यह है कि एक औरत का किसी शख्स के बच्चों को जन्म देने के लिए खास होना। जब कोई शख्स किसी औरत से निकाह कर लेता है तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ इसी के लिए वती जायज है, किसी और के लिए वती जायज नहीं, और इस औरत से जो बच्चे भी होंगे वो इसी खावंद के शुमार होंगे भाई। तो मनकूहा जो है वो फिराश है, और वो फिराश कवी है, हत्ता कि उससे जो भी बच्चा पैदा हो वो खुद ब खुद खावंद का शुमार होता है। और अगर खावंद बच्चे के नसब की नफी करना चाहता है अपने से, तो फिर पैदाइश के इब्तदाई दिनों में करना होगी वो नफी, और नीज उसके अंदर लियान भी करना होगा, वैसे नफी नहीं कर सकता। अगर वो वक्त गुजर गया तो ये बच्चा इसी का शुमार होगा, बाद में नफी करता भी रहे उसका कोई एतबार नहीं। तो ये बीवी जो है ये फिराश कवी है, और सबसे ज़ईफ फिराश जो है वो बांदी का है, आका के लिए उससे सोहबत जायज है, और उस बांदी से जो भी बच्चा पैदा हो वो खुद बखुद आका का शुमार नहीं होगा। तो हां, जब आका इकरार कर ले ये मेरा बच्चा है, फिर वो उसका बच्चा शुमार होगा, फिर अब ये उसकी उम्मे वलद बन गई जी। और जब एक दफा उम्मे वलद बन गई तो अब ये फिराश मुतवस्सित हो गई। फिराश मुतवस्सित उम्मे वलद है, उम्मे वलद से जो भी औलाद पैदा होगी वह खुद बखुद इसी आका की शुमार होगी, इसी आका की शुमार होगी। लेकिन अगर आका नफी करना चाहे अगले बच्चे की, तो बगैर लिहान के भी नफी कर सकता है। तो मालूम हुआ सबसे कवि फिराश मन कोहा का है, जहां पैदा होने वाला हर बच्चा खुद ही इस खावंद का शुमार होता है और उसकी नफी बगैर लियान के नहीं हो सकती। और सबसे ज़ईफ फिराश बांदी का है कि वहां पैदा होने वाला बच्चा खुद बखुद आका का शुमार ही नहीं होता जब तक वह इकरार ना करे। और फिराश मुतवस्सित उम्मे वलद का है कि उससे जो बच्चा पैदा होगा वह खुद बखुद आका का शुमार होगा, लेकिन अगर आका नफी करना चाहे तो बगैर लियान के भी नफी कर सकता है। तो मालूम हुआ उम्मे वलद फिराश मुतवस्सित है। तो हमारी दलील चल रही थी, हमारे नजदीक जब इस उम्मे वलद के आका का इंतकाल हो गया या आका ने इसको आजाद कर दिया तो इसका फिराश होना जायल हो गया, इसका फिराश होना जायल हो गया। जिस तरह मनकूहा को जब तलाक दी जाती है तो चूंकि उसका फिराश होना खत्म हो जाता है लिहाजा उस पर इद्दत आती है, तो लिहाजा इस उम्मे वलद के अंदर भी जो इद्दत आएगी ये जवाले फिराश की वजह से आएगी, जवाले मिलके यमीन की वजह से नहीं है भाई, क्योंकि इसका फिराश होना खत्म हुआ है। लिहाजा ये किसके मुशाबे है, ये इद्दत निकाह के मुशाबे है, ये इस्तिबरा के मुशाबे नहीं है। जब ये इद्दत निकाह के मुशाबे है तो इस पर इद्दत निकाह आएगी, और इद्दत निकाह ये तो आजाद हो चुकी है तो इस पर तीन हैस पूरे आएंगे भाई। वलना, और हमारी दलील यह है कि अन्नहा वजबत बिजवाल फिराशी, कि ये जो इद्दत वाजिब हुई है उम्मे वलद पर ये वाजिब हुई है फिराश जायल होने की वजह से। फअशबहा इद्दत निकाही, तो ये मुशाबे हो गई इद्दत निकाह के। सुम्मा इमामुना फीही उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, फिर इस बात के अंदर हमारे इमाम और हमारे मुक्तदा जो हैं हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। फइन्नहु काल, वो फरमाते हैं इद्दत उम्मिल वलदि सलासु हियज़िन, के उम्मे वलद की इद्दत तीन हैज हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को फरमा रहे हैं, मालूम हुआ हमारा मजहब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से साबित है। आगे देखिए, वलाउ कानत मिम्मन ला तहीज़ु फ़इद्दतुहा सलासतु अशहुरिन, और अगर ये उम्मे वलद उन औरतों में से है जिनको हैज नहीं आता, फ़इद्दतुहा सलासतु अशहुरिन, तो फिर इसकी इद्दत तीन महीने होंगे। कमा फिन निकाह, जैसे निकाह के अंदर होता है कि निकाह वाली को अगर हैज न आते हों तो फिर वो तीन महीनों के साथ इद्दत गुजारती है भाई। वइदा मात सगीर वानी मराती ही व बिहा हबलुन फइद्दतुहा अंतज़ा हमलहा। सूरत मसला ये, एक सगीर का इंतकाल हुआ, एक नाबालिग था और उसके वली ने निकाह करवा दिया था किसी बालिगा औरत के साथ। अब इस सगीर का इंतकाल हुआ, बीवी इसके पीछे बाकी है और बीवी हामिला है, तो अब इस हामिला की इद्दत क्या होगी? तो याद रखो, तरफेन रहिमहुमल्लाह फरमाते हैं, यानी इमाम अबू हनीफा और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह, वो फरमाते हैं कि इसकी इद्दत वज़ए हमल होगी, इसकी इद्दत वज़ए हमल होगी। जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह और इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस औरत की इद्दत चार महीने दस दिन होगी, क्योंकि खावंद का जब इंतकाल हो जाए तो बीवी की इद्दत कितनी होती है? चार महीने और दस दिन। भाई ये तो हामिला थी तो फिर इसकी इद्दत तो वज़ए हमल होनी चाहिए। कहते हैं भाई ये सगीर है, नाबालिग है, और ये जब नाबालिग है तो नाबालिग से तो हमल नहीं ठहर सकता औरत का। मालूम हुआ ये हमल, ये जिना से हामिला है ये औरत, सगीर की औलाद नहीं है इसके पेट में, तो लिहाजा ये जिना से हामिला है तो इसके हमल का कोई एतबार नहीं है। जब इसके हमल का कोई एतबार नहीं है तो इस पर वही वफात की इद्दत चार महीने दस दिन आएंगे। देखिए भाई, कहते हैं वही दा मात सगीर अनी मराती ही, और जब सगीर मर गया अनी मराती ही अपनी बीवी को छोड़कर, व बिहा हबलुन, और उस औरत को हमल है। हबल मैंने बताया, हबल का क्या माना है? हमल, और इसमें बा मुतहर्रिक है, बा को साकिन न पढ़ना भाई। वह बिहा हबलुन, और इस औरत को, ये जो सगीर की जो बीवी है उसको हमल है। फइद्दतुहा अंतज़ा हमलहा, तो इस औरत की इद्दत जो है वो ये है कि अपने हमल को जन्म दे दे। वहां दा इंद अबी हनीफा व मुहम्मदिन रहिमहुमल्लाह, और ये तरफेन रहिमहुमल्लाह के नजदीक है। वकाल अबू यूसुफ रहिमहुल्लाह, और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह फरमाते हैं इद्दतुहा اربعه اشهر وعشر کہ اس عدت چار مہینے اور دس دن ہیں. وہو قول الشافعی رحمہ اللہ, اور یہی قول ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی. لئن الحمل لیس بثابت نسب منہ, کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ جو حمل ہے یہ اس صغیر سے ثابت نہیں ہے. لأن الحمل ليس بثابت النسب منه, اس لیے کیونکہ یہ والا جو حمل ہے اس کا نسب ثابت نہیں ہے. منه اس صغیر سے. فصار كالحادث بعد الموت, تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے یہ حمل پیش آیا ہو موت کے بعد. جیسے موت کے بعد صغیر کی بیوی حاملہ ہوئی تو اس پر موت کی وجہ سے وفات والی عدت پہلے ہی آ چکی ہے, وہی اس کو گزارنا پڑے گی. تو یہاں موت سے پہلے بھی جب حاملہ ہوئی ہے تو یہ حمل بھی اسی حمل کی طرح ہے جو موت کے بعد پیش آئے, کیونکہ جیسے موت کے بعد پیش آنے والا حمل وہ اس صغیر کا نہیں ہو سکتا, اسی طرح اس وفات کے وقت بھی عورت حاملہ ہے تو یہ حمل بھی صغیر کا نہیں ہو سکتا. تو دونوں ایک دوسرے جیسے ہوئے تو دونوں کا ایک ہی حکم ہوگا. اور موت کے بعد جو حمل پیش آئے اس میں تو بال اتفاق وہاں عورت کی عدت چار مہینے دس دن ہے, تو اس کے اندر بھی یہ جو پہلے سے حاملہ ہے اس کے اندر بھی عورت کی عدت چار مہینے دس دن ہی ہوگی. دلیل سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں فصار کالحادث بعد الموت, تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے یہ حمل پیش آیا ہو اس صغیر کی موت کے بعد. ولہما, اب طرفین کی دلیل آ گئی. وَلَهُمَا طَرَفَيْنِ کی دلیل جو ہے اطلاق قولہ تعالی, وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کا مطلق ہونا ہے. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, اور حمل والیوں کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنے حمل کو جنم دے دیں. یہاں مطلقاً حمل والیوں کی عدت وضع حمل قرار دی گئی ہے. اس میں یہ قید نہیں ہے کہ یہ حمل اسی شخص خاوند کا ہو یا کسی اور کا ہو, نہیں, کوئی قید نہیں ہے. تو جو بھی وفات کے وقت یا طلاق کے وقت حاملہ ہے اس کی عدت وضع حمل ہے. تو کہتے ہیں ولہما طرفین کی دلیل جو ہے اطلاق قولہ تعالی, و اللہ تعالیٰ کے اس قول کا مطلق ہونا ہے. وہ اولات الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن, اور حمل والیوں کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنے حمل کو جنم دے دیں. تو اس کے اندر کوئی قید نہیں ہے کہ حمل خاوند سے ہو یا کسی اور سے, سب حاملوں کی عدت مطلقاً وضع حمل بیان کی گئی ہے. ولأنها مقدرة بمدة وضع الحمل في أولاة الأحمال, دوسری وجہ ذکر کر رہے ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ کا قول ذکر کر دیا, دوسری دلیل ذکر کر رہے ہیں صاحب ہدایہ طرفین کی طرف سے. طرفین فرماتے ہیں کہ یہ جو عدت وفات شریعت نے واجب کی ہے یہ کوئی رحم کی صفائی جاننے کے لیے نہیں ہے, اس لیے کیونکہ وہ عورتیں جن کو حیض آتا ہے اور ان کے خاوند کا انتقال ہو گیا ان کو بھی شریعت نے حیض کے ساتھ عدت گزارنے کا حکم نہیں دیا, بلکہ ان کی عدت بھی چار مہینے دس دن ہی ہے. تو معلوم ہوا یہاں حیض والی اور غیر حیض والی میں کوئی فرق نہیں کیا گیا, سب کی عدت چار مہینے دس دن ہے خاوند کی وفات پر. تو معلوم ہوا یہ جو عدت شریعت نے واجب کی ہے یہ رحم کی صفائی جاننے کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ نکاح کا حق ادا کرنے کے لیے ہے. تو لہذا وضع حمل والی کے اندر بھی وضع حمل جو ہے اس کو عدت قرار دیا گیا ہے بطور نکاح کے حق کے, بطور نکاح کا حق ادا کرنے کے طور پر اس کو عدت قرار دیا گیا ہے. اور نکاح کا حق تو چاہے صغیر ہی کیوں نہیں تھا, نکاح تو وہاں موجود تھا, اور جب صغیر کا انتقال ہوا ہے تو حق نکاح عورت کو ادا کرنا پڑے گا اور عدت گزارنا پڑے گی, اور وہ حاملہ ہے تو وہ وضع حمل تک وہ عدت گزارے گی, چاہے یہ مدت چھوٹی ہو چاہے لمبی ہو, لیکن یہ جو مدت گزار رہی ہے وضع حمل تک یہ نکاح کا حق ادا کرنے کے لیے ہے. بات سمجھ میں آ گئی. دیکھیے صاحب ہدایہ اس کو اور اچھے الفاظ میں بیان فرمائیں گے. کہتے ہیں ولی انہا مقدرتم بمدت وضع الحمل, ولی انہا اس لیے کیونکہ یہ جو عدت وفات ہے مقدرتم بمدت وضع الحمل, یہ وضع حمل کی مدت کے ساتھ مقرر ہے. یہ عدت وفات حاملہ کے لیے, حاملہ کے لیے عدت وفات کیا ہے؟ غیر حاملہ کے لیے تو چار مہینے دس دن, لیکن حمل والی کے لیے عدت وفات وضع حمل ہے. تو حمل والیوں کے اندر عدت وفات وضع حمل کے ساتھ مقرر کی گئی ہے. توجہ ہے, دیکھیے کہتے ہیں ولی انہا مقدرہ تم بھی مدتی وضع الحمل فی اولات الاحمالی, اس لیے کیونکہ یہ عدت وفات مقرر ہے وضع حمل کی مدت کے ساتھ, فی اولات الاحمالی حمل والیوں میں, قصورت المدت او طالت چاہے یہ مدت تھوڑی ہو چاہے لمبی, یعنی چاہے خاوند کی وفات کے چند گھنٹوں بعد بھی بیوی بچے کو جنم دے دی گی تو عدت ختم, اور چاہے خاوند کی وفات کے بعد سات آٹھ مہینے کے بعد بھی بچے کو جنم دے گی تو تب عدت ختم ہوگی بھائی. تو کہتے ہیں قصورت المدت و اوطالت, چاہے یہ مدت چھوٹی ہو اوطالت یا لمبی ہو, لا لتعرف عن فراغ الرحمی, رحم کی فارغ ہونے کو جاننے کے لیے نہیں ہے, یا عدت رحم کے فارغ ہونے کو جاننے کے لیے نہیں ہے, لشرعها بالاشہر, اس لیے کیونکہ یہ عدت وفات مشروع ہے مہینوں کے ساتھ, مع وجود الاقراء, حیضوں کے پائے جانے کے باوجود, عورت کو حیض آ رہے ہوں اس کے باوجود یہ عدت وفات مہینوں کے ساتھ واجب ہے, معلوم ہوا یہ رحم کی صفائی کو جاننے کے لیے نہیں ہے بھائی. تو پھر یہ کس لیے ہے, کہتے ہیں لیکن لقضاء حق النکاح, لیکن یہ نکاح کا حق ادا کرنے کے لیے ہے, یہ جو وفات والی عدت ہے یہ کس لیے ہے, وفات کا حق ادا کرنے کے لیے ہے, وہاد المعنی یتحقق فی السبی, اور یہ والا معنی یہ والی علت تو بچے میں بھی پائی جا رہی ہے, اس کے بھی نکاح کا حق ادا کرنا ہے اس عورت کو, اس کے نکاح کا حق بھی اس عورت کو ادا کرنا ہے. تو اگر یہ غیر حاملہ ہوتی تو چار مہینے دس دن تھے, اور جب یہ حاملہ ہے تو چاہے حمل اس سے خاوند سے ہے یا کسی اور سے, لیکن اس کی عدت کیا ہوگی, وضع حمل ہوگی حق نکاح کو ادا کرنے کے لیے. تو کہتے ہیں وہذا المعنی یتحقق فی سبیہ, اور یہ حق نکاح کو ادا کرنے والا معنی, یہ علت جو ہے یہ بچے میں بھی پائی جا رہی ہے, وَإِن لَمْ يَكُنِ الْحَمْلُ مِنْهُ, اگرچہ حمل بچے سے نہیں ہے, حمل بچے سے نہیں ہے لیکن پھر بھی حق نکاح تو یہاں بھی عورت کو ادا کرنا پڑے گا, تو وہ حاملہ ہے تو وضع حمل ہی اس کی عدت ہوگی. بھئی دیکھو یہ دلیل کا حاصل پھر سمجھ لو, طرفین فرماتے ہیں کہ یہ جو وفات والی عدت شریعت نے واجب کی ہے یہ رحم کی فراغت کو جاننے کے لیے نہیں ہے کہ رحم صاف ہے یا نہیں, بلکہ یہ حق نکاح کو ادا کرنے کے لیے ہے, اور حاملہ کے اندر یہ وضع حمل کے ساتھ مقرر کی گئی ہے, لہذا صغیر کا جب انتقال ہوا اور اس کی بیوی حاملہ ہے تو حق نکاح کا تقاضا یہ ہے کہ یہ عورت وضع حمل تک نکاح سے رکی رہے, اگرچہ یہ حمل ثابت النسب نہیں, لیکن پھر بھی یہ جو شریعت نے یہ جو عدت واجب کی ہے یہ رحم کی صفائی جاننے کے لیے نہیں ہے بلکہ حق نکاح کو ادا کرنے کے لیے ہے, اور حق نکاح تو صغیر کا نکاح کے اندر بھی پایا جا رہا ہے, لہذا یہاں پر بھی عورت یہ وضع حمل ہی گزارے گی, وہ چار مہینے دس دن نہیں گزارے گی, کیونکہ رحم کی صفائی کا جاننا یہاں مقصود نہیں ہے بھائی. بات واضح ہو گئی؟ تو یہ معنی ہے وہاد المعنی یتحقق فی الصبی, اور یہ حق نکاح کو ادا کرنے والا معنی بچے میں بھی پایا جاتا ہے, وَإِن لَمْ يَكُنِ الْحَمْلُ مِنْهُ, اگرچہ حمل اس سے نہ ہو, بخلاف الحمل الحادثی, امام ابو یوسف رحم اللہ اور امام شافعی رحم اللہ نے اس حمل کو قیاس کیا تھا اس حمل پر جو موت کے بعد آئے, صغیر کا انتقال ہو گیا, بیوی حاملہ نہیں ہے, اس کے بعد زنا سے وہ حاملہ ہو گئی, تو وہ فرماتے ہیں کہ جیسے وہ حمل ثابت النسب نہیں ہوتا لہذا وہاں عورت چار مہینے دس دن ہی گزارتی ہے, وہاں وضع حمل کا اعتبار نہیں, تو یہاں پر بھی یہ جو حمل ہے جو موت کے وقت موجود ہے یہ بھی ثابت النسب نہیں, یہ بھی اسی کی طرح ہے, لہذا وہ حمل جو ثابت النسب نہ ہو اس میں عورت کو چار مہینے دس دن کی عدت گزارنا پڑے گی. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ نہیں, آپ اس حمل کو جو موت کے وقت موجود ہے آپ اس کو قیاس نہیں کر سکتے اس حمل پر جو موت کے بعد پیش آیا ہے. وجہ یہ کہ جو حمل موت کے بعد پیش آیا ہے وہاں تو وفات کے وقت پہلے ہی کون سے عدت لازم ہو چکی, चार महीने दस दिन, उसके बाद हमल पेश आ भी जाए तो इद्दत बदल नहीं सकती, वहां तो चार महीने दस दिन ही गुजारने पड़ेंगे क्योंकि वो इद्दत लाजिम हो चुकी है उस औरत पर। जबकि यहां पर तो मौत के वक्त ही औरत हामिला थी, तो इब्तिदाअन ही जो इद्दत वाजिब हुई वो वज़ए हमल है। तो आपका यह कहना कि जो हमल वफात के बाद पेश आया उसकी वजह से इद्दत नहीं बदलती बल्कि चार महीने दस दिन रहते हैं, तो यह हमल जो पहले से है लेकिन साबित नसब नहीं है तो इसका भी एतबार नहीं होगा, इद्दत क्या आएगी? चार महीने दस दिन। कहते हैं नहीं, दोनों में फर्क है भाई, वो जो हमल जो मौत के बाद पेश आया है वहां तो पहले ही इद्दत आ चुकी है चार महीने दस दिन वाली, लिहाजा उस नए हमल से जो जिना से हुआ है उससे इद्दत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और जबकि यहां पर तो वफात के वक्त यह औरत हामिला है तो वफात के वक्त से ही इस पर वज़ए हमल वाली इद्दत आई है भाई। तो कहते हैं बिखिलाफ इल्हमल हादिसी, बखिलाफ वो हमल जो नया पेश आया है, लिअन्नहु वजबतिल इद्दतु बिशुहूरी, इसलिए क्योंकि वहां पर इद्दत वाजिब हुई थी महीनों के साथ, फला ततगय्यरु बिहुदूसिल हमल, तो वहां पर इद्दत जो है हमल पेश आने से बदलेगी नहीं, वफी मा नहनु फीही, और वो मसला जिसके अंदर हम हैं, कमा वजबत वजबत मुकद्दरतम बिमुद्दतिल हमल, तर्जमा तवज्जो से सुनो, वफी मा नहनु फीही, और उस मसले के अंदर उस सूरत में जिसके अंदर हम हैं यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कमा वजबत जब इद्दत वाजिब हुई थी तो वजबत मुकद्दरतम बिमुद्दतिल हमल, तो वाजिब हुई थी वो मुद्दत हमल के साथ मुकर्रर होकर। यहां पर जब इद्दत वाजिब ही हुई है तो इब्तिदाअन ही वज़ए हमल के साथ मुकर्रर होकर वाजिब हुई है, फफ्तारका, दोनों जुदा हो गए। क्या दोनों जुदा हो गए? एक वो हमल जो मौत के वक्त मौजूद है और एक वो हमल जो मौत के बाद पेश आया है, तो दोनों जुदा हो गए भाई। जो मौत के बाद पेश आया वहां पहले ही महीनों वाली इद्दत आ चुकी है, और वो हमल जो मौत के वक्त मौजूद है वहां इब्तिदाअन ही इद्दत कौन सी आ रही है? वज़ए हमल वाली भाई। तो लिहाजा दोनों मुख्तलिफ हैं भाई, तो आप एक का हुक्म दूसरे को नहीं दे सकते। आगे देखिए, वला यलजमु मरातल कबीरी इदा हदस लहल हबलु बादल मौती लिअन्न नसब यसबुतु मिन्हु फकान कल काइम इंदल मौत हुक्मन। यहां से साहिब हिदाया फरमा रहे हैं कि इमरातुल कबीर का एतराज भी इस पर लाजिम नहीं आता, ये तो सगीर की बीवी थी, अगर कबीर की बीवी हो यानी बालिग आदमी की बीवी। याद रखो मैंने आपको बतलाया था कि शरीयत सुबूत नसब में बे इंतहा एहतियात से काम लेती है, शरीयत की पूरी कोशिश होती है कि बच्चे का नसब साबित हो जाए। वजह यह कि बच्चे का नसब अगर साबित नहीं होगा तो यह वलदु जिना होगा, तो कोई इसका ख्याल रखने वाला और परवरिश करने वाला नहीं होगा भाई, तो यह बच्चा हलाक हो जाएगा, और अगर हलाकत से बच भी गया तो यह जब बड़ा होगा तो यह वलदु जिना ही मशहूर होगा कि इसके बाप का पता ही नहीं है, तो माशरे के अंदर भी उसको बे इंतहा हकारत की नजर से देखा जाएगा भाई। तो शरीयत की पूरी कोशिश होती है कि किसी तरह बच्चे का नसब साबित कर दिया जाए। लिहाजा याद रखो, खावंद का इंतकाल हुआ, बीवी हामिला नहीं है, लेकिन उस औरत ने कुछ मुद्दत के बाद एक बच्चे को जन्म दिया, चाहे साल बाद जन्म दिया चाहे डेढ़ साल बाद जन्म दिया, लेकिन दो साल से कम कम, इसलिए क्योंकि हमल की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत कितनी है? दो साल है, बच्चा ज्यादा से ज्यादा दो साल तक मां के पेट में रह सकता है, इससे ज्यादा वो मां के पेट में नहीं रह सकता। तो अब खावंद का इंतकाल हुआ, औरत गैर हामिला है, बाद में उसने एक बच्चे को जन्म दिया साल डेढ़ साल बाद, शरीयत फिर भी इस बच्चे का नसब साबित कर देगी, ये उसी शख्स मरने वाले का बेटा है जी। लेकिन यह शर्त है, औरत ने इस दौरान यह इकरार न किया हो कि मेरी इद्दत गुजर गई। अगर उसने बीच में किसी वक्त कह दिया था मेरी इद्दत गुजर गई, अब नहीं, अब हम साबित कर ही नहीं सकते, औरत खुद कह चुकी है मेरी इद्दत गुजर गई, मालूम हुआ ये उसके बाद हमल ठहरा है, ये जिना से हमल है। तो लिहाजा औरत ने इकरार ना किया हो और खावन की वफात के बाद वो साल बाद डेढ़ साल बाद लेकिन दो साल से कम के अंदर बच्चे को जन्म देती है, अब यह हमल भी जाहिर सी बात है कि खावन की वफात के बाद हमल पेश आया है, जाहिर यही है खावन की, लेकिन शरीयत नसब साबित करेगी और इसको उस शख्स का बच्चा करार दिया जाएगा भाई। तो यूं समझेंगे कि गोया मौत के वक्त यह हमल मौजूद था। मौत के वक्त हुक्म लगा दिया जाएगा, मौत के वक्त यह हमल मौजूद था, भाई बच्चे का नसब साबित करना है उस खावन से, तो लिहाजा हुक्म लगा दिया जाएगा कि यह हमल मौजूद था और यह ज्यादा देर तक मां के पेट में रहा। तो चूंकि इस बच्चे का नसब साबित हो रहा है उस मरने वाले खावन से, तो लिहाजा यह हुक्म लगाया जाएगा कि यह मौत के वक्त भी यह हमल मौजूद था, मौत के वक्त यह हमल मौजूद था। बात समझ में आ गई। अब इश्काल सुनो, यहां पर साहिबे हिदायत जवाब दे रहे हैं तरफैन की तरफ से। तरफैन ने क्या कहा कि एक वो हमल है जो सगीर की मौत के वक्त मौजूद है, एक वो हमल है जो सगीर की मौत के बाद पेश आए। सगीर की मौत के वक्त जो हमल मौजूद है उस औरत की इद्दत वज़ह हमल है, और सगीर की मौत के बाद जो हमल पेश आए वहां इद्दत 4 महीने 10 दिन है भाई। तो इस पर इश्काल होता है कि सगीर के इंतकाल के वक्त बीवी का हमल नहीं है और फिर बाद में बीवी हामिला हुई, तो भी आप कहते हैं इसकी इद्दत 4 महीने 10 दिन है, आप इसके इद्दत वसे हमल करार नहीं देते। हालांकि कबीर की बीवी के अंदर अगर मौत के बाद हमल पेश आ जाए, तो जब कबीर का इंतकाल हुआ था तो औरत तो हामिला नहीं थी, तो इद्दत 4 महीने 10 दिन थी, लेकिन बाद में नया हमल पेश आया तो आपने उसके इद्दत को बदल दिया वजह हमल की तरफ
जी।
तो सगीर की बीवी के अंदर भी जब मौत के बाद हमल पेश आए तो उसकी इद्दत को बदलना चाहिए वजह हमल की तरफ। बात समझ में आ गई। तो उसका जवाब दे रहे हैं कि नहीं, दोनों में फर्क है। सगीर के मसले में वफात के बाद जो हमल पेश आया है उसका नसब सगीर से साबित नहीं हो सकता, लिहाजा वहां इद्दत नहीं बदली जा सकती। जबकि कबीर की बीवी के अंदर जो हमल वफात के बाद पेश आया है वहां कबीर से नसब साबित होगा उस बच्चे का। जब नसब साबित होगा तो हुक्मन यूं समझा जाएगा कि वफात के वक्त यह हमल मौजूद था, और जब वफात के वक्त यह हमल मौजूद होने का हुक्म लगाया जाएगा तो मालूम हुआ उस वक्त औरत हामिला थी, और जब हामिला थी तो उसकी इद्दत क्या करार दी जाएगी वज़ह हमल। तो लिहाजा कबीर की बीवी के अंदर तो इद्दत महीनों से बदलकर वज़ह हमल की तरह मुंतकिल हो जाएगी जब हमल बाद में पेश आए, लेकिन सगीर के अंदर ऐसा नहीं होगा क्योंकि वहां हमल साबितुन नसब नहीं। भाई फर्क समझ में आ गया। तो कहते हैं वला यल्जम उम्रा अतल कबीरी, और लाजिम नहीं आता इस पर कबीर की यानी बालिग आदमी की बीवी का एतराज। इजा हदस लहल हबलु बादल मौती, जब उस औरत को पेश आ जाए हमल खावंद की मौत के बाद, खावंद की मौत के बाद हामिला हुई है लेकिन मैंने बताया उसने इद्दत के गुजरने का इकरार न किया हो भाई। ले नसब यसबुतु मिन्हु, इसलिए क्योंकि इस हमल का नसब जो है उस फौत होने वाले खावन से साबित हो जाएगा। फका नकल काइमी इंदल मौत हुक्मन, तो गोया कि यह हमल जो है वो मौजूद था उस खावन की मौत के वक्त हुक्मन बैतबार हुक्म के, यानी यह हुक्म लगा दिया जाएगा कि यह हमल उस वक्त मौजूद था क्योंकि नसब साबित हो रहा है। वला यसबुतु नसब उलवलदी फिल वजहैन, जबकि सगीर के मामले में इस बच्चे का नसब साबित नहीं होगा फिल वजहैनी दोनों सूरतों में, चाहे वफात के वक्त हामिला हो चाहे वफात के बाद हामिला हो जाए, दोनों सूरतों में इस हमल का नसब सगीर से साबित नहीं हो सकता। तो कहते हैं वला यसबुतु नसबुल वलदी फिल वजहैनी, और सगीर के मामले के अंदर इस बच्चे का नसब दोनों सूरतों में साबित नहीं होगा। लिअन्न सबिय्य लामा अलहू, इसलिए क्योंकि बच्चा जो होता है उसका पानी नहीं होता, यानी पानी से मुराद मादा मनविया है जिससे बच्चे की पैदाइश होती है। तो कहते हैं लिअन्न सबिय्य लामा अलहू, इसलिए क्योंकि बच्चे का पानी नहीं होता। फला युतसव्वरु मिन्हुल उलूक, उलूक कहते हैं हमल का ठहरना, हमल करार पाना। फला युतसव्वरु मिन्हुल उलूक, लिहाजा बच्चे से हमल ठहरने का तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि यह हमल उससे ठहरा हो। वन निकाहु युकामु मकामहु फी मौज़ई तसव्वुर, सवाल पैदा होता है बच्चे से उलूक नहीं हो सकता, बच्चा है बालिग ही नहीं है तो उसे औरत का हमल नहीं ठहर सकता, लेकिन निकाह तो मौजूद है, निकाह तो मौजूद था, और हदीस में आया है अलवलदु लिल फिराशी अयली साहिब अल फिराशी, कि बच्चा हमेशा किसका होता है साहिब फिराश यानी खावंद का होता है, तो निकाह तो मौजूद है। कहते हैं भाई निकाह भी
निकाह मौजूद हो तब भी नसब साबित हो जाता है, लेकिन उलू का तसव्वुर तो हो सके। जहां उलू का तसव्वुर ही नहीं हो सकता, एक नाबालिग है उससे औरत हामिला हो ही नहीं सकती, तो वहां पर निकाह को उलू के कायम मकाम नहीं करार दिया जा सकता भाई। तो कहते हैं वन निकाह हो युकाम मकाम हो, और निकाह जो है इसको उलूक के कायम मकाम कर दिया जाता है, फी मौज़ई तसव्वुरी, जहां उलूक का तसव्वुर किया जा सके भाई। व इदा तल्लका रजुल इम्रअतहू फी हालतिल हैज़ी लम तअतद्द बिल हैज़ती, भाई देखो खावंद ने बीवी को हैज के अंदर तलाक दे दी तो क्या इस हैज को भी इद्दत में शुमार करेंगे? कहते हैं नहीं, इस हैज को इद्दत में शुमार नहीं करेंगे। वजह यह कि इद्दत पूरे तीन हैज गुजारने हैं और इस हैज का तो कुछ हिस्सा गुजर चुका है भाई, लिहाजा अगले पूरे तीन हैज औरत शुमार करेगी जी। तो कहते हैं वइदा तल्लका रजुल इम्रअतहू फी हालतिल हैज़ी, और जब कोई शख्स तलाक दे दे अपनी बीवी को फी हालतिल हैज़ी हैज की हालत में, तो लम तअतद्दा तो ये औरत शुमार नहीं करेगी, बिल हैज़तिल लती वक़अ फीहा तलाकु उस हैज को जिसके अंदर तलाक वाके हुई है, लिअन्नल इद्दत मुकद्दरतुम बिसलासी हियज़िन कवामिला, इसलिए क्योंकि ये इद्दत मुकर्रर है पूरे तीन हैजों के साथ, لأن العدة مقدرة بثلاث حيز كواملة इसलिए क्योंकि यह عدت مقرر ہے تین پورے حیضوں کے ساتھ فلا ينقص عنها لہذا اس سے اس کو کم نہیں کیا جائے گا پورے تین حیض اگلے گزارنے پڑیں گے وإذا وطئت المعتدة بشبهة فعليها عدة أخرى اب وہ مسائل ذکر فرمائیں گے صاحب ہدایہ جہاں عدتوں کے اندر تداخل ہوتا ہے एक इद्दत दूसरी इद्दत के अंदर दाखिल हो जाती है। अब सूरत मसला ये, एक औरत है उसको खावन ने तलाक दे दी है, वो इद्दत गुजार रही है, मसलन तलाके बाइन दी है, तलाके बाइन, तो तलाके बाइन से निकाह पूरे तौर पर टूट चुका है, यह औरत खावन के लिए हराम हो चुकी है, लेकिन इसी इद्दत के अंदर खावन फिर सोहबत कर लेता है और कहता है मैं तो समझा था अभी तक इद्दत बाकी है, यह औरत मेरे लिए हलाल है, या कोई अजनबी इसके साथ वती भी शुबा कर लेता है, मसलन इस औरत ने निकाह फासिद कर लिया इस दौरान और उसने सोहबत कर ली, तो इस सूरत में इस औरत पर एक नई इद्दत आएगी भाई, सोहबत के बाद से फिर नई इद्दत शुमार करेगी और पहली इद्दत के साथ इस इद्दत का तदाखुल हो जाएगा, पहली इद्दत के साथ इस इद्दत का तदाखुल हो जाएगा, तो लिहाजा या तो दोनों इद्दतें इकट्ठी पूरी होंगी, मसलन खामन ने तलाक दी थी और उसी तोहर के अंदर खामन ने सोहबत भी कर ली, तो अभी तो हैज आए ही नहीं, तो अगले तीनों हैज दोनों इद्दतों के शुमार होंगे, या इसके साथ जो वती भी शुबा की गई वो पहले हैज या दूसरे हैज के बाद की गई, तो पहली इद्दत के तो दो हैज मसलन गुजर चुके हैं, एक हैज बाकी है, लेकिन अगली इद्दत के तीन पूरे हैज गुजारने पड़ेंगे, तो लिहाजा जो अगला हैज आएगा ये पहली इद्दत का आखिरी हैज और दूसरी इद्दत का पहला हैज शुमार होगा, तवज्जो है, तो अगले तीन हैज औरत पूरे कर लेगी। तो कहते हैं वईदा वुतिअतिल मुअतद्दत बिशुबहतिन, और जब सोहबत कर ली गई किसी मुअतद्दा से शुबे की वजह से, फअलैहा इद्दतुन उखरा, तो उस औरत पर एक और इद्दत होगी, व तदाखलतिल इद्दतानी, और तदाखुल हो जाएगा दोनों इद्दतों में, व यकूनु मा तराहुल मरअतु मिनल हैज़ी, और वो जिसको औरत देखेगी हैज में से, मुहतसबम मिनहुमा जमीआ, उसको शुमार किया जाएगा इन दोनों में से, अगले हैज अब इन दोनों में शुमार होंगे, वह इदन कजतिल इद्दतुल उला, और जब पहली इद्दत पूरी हो गई, जब पहली इद्दत गुजर गई, वलम तुक मिली सानियाता, और हाल यह है कि दूसरी इद्दत अभी पूरी नहीं हुई, तो फालेहा इतमामुल इद्दत सानियती, तो इस औरत पर वाजिब है दूसरी इद्दत को पूरा करना, वहादा इंदना, और ये हमारे नजदीक है, वकाल शाफिई रहिमहुल्लाहु ताला ला तदाखलानी, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इन दोनों इद्दतों में तदाखुल नहीं होगा, लिअन्नल मकसूद हुवल इबादत, इसलिए क्योंकि इद्दत के जरिए मकसूद जो है वह अल्लाह की इबादत है, अल्लाह के हुक्म पर अमल हो रहा है, इन्हा इबादत कफिन अनि तज़व्वुजी वल खुरूजी, कफ़ुन का माना है रुकना भी और रोकना भी,
فَإِنَّهَا عِبَادَتُكَ فِن, اس لیے کیونکہ یہ جو عدت ہے یہ رکنے کی عبادت ہے. عَنِ التَّزَوُّجِ وَالْخُرُوجِ, نکاح سے اور باہر نکلنے سے. یاد رکھو آگے صاحب ہدایہ بھی آپ کو تفصیل بتلائیں گے کہ عدت کے اندر کیا کیا پابندیاں آتی ہیں عورت پر. بھائی تو یاد رکھو عورت پر تین پابندیاں آتی ہیں. ایک یہ کہ وہ نکاح آگے نہیں کر سکتی, تو یہ تزوج کی پابندی آ گئی. دوسرا خروج, گھر سے وہ نہیں نکل سکتی, تو خروج کی بھی پابندی آ گئی. اور نیز زیب و زینت بھی نہیں کر سکتی, یعنی تزین بھی. تو عدت کے اندر عورت پر تین پابندیاں آتی ہیں. تزین والی تو سب پر نہیں آتی, تزین والی, لیکن گھر سے نکلنا بھی منع اور آگے نکاح کرنا بھی منع. یہ تو ہر معتدہ پر آئے گی. جبکہ جس کو طلاق رجعی ہوئی ہو وہ زیب و زینت کر سکتی ہے, بلکہ اس کے لیے پسندیدہ ہے وہ زیب و زینت اختیار کرے تاکہ خاوند رجوع کر لے. بھائی تو معلوم ہوا یہ عدت جو ہے یہ بھی عبادت ہے, اور یہ رکنے والی عبادت ہے. کس چیز سے رکنا ہے؟ تزوج اور خروج سے. تزوج اور خروج سے. جس طرح روزہ جو ہے, روزہ بھی رکنے والی عبادت ہے. انسان کی دو بڑی شہوتیں ہیں, ایک کھانے کی شہوت اور ایک بیوی کی شہوت. بھائی تو ان دو شہوتوں سے اپنے آپ کو روکنے کا نام روزہ ہے. اسی طرح عدت بھی جو ہے وہ رکنے کی عبادت ہے. اور کن دو چیزوں سے رکنا؟ تزوج اور گھر سے نکلنے سے. تو کہتے ہیں فَإِنَّهَا عِبَادَتُكَ فِنْ عَنِ التَّزَوُّجِ وَالْخُرُوجِ, اس لیے کیونکہ یہ نکاح اور گھر سے باہر نکلنے سے رکنے کی عبادت ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ بعض عبادتوں میں ہمیں فیل کرنا پڑتے ہیں, نماز ہے, زکات ہے, حج ہے, ان میں ہمیں باقاعدہ افعال کرنے پڑتے ہیں, اور کچھ عبادتوں کے اندر صرف نفس کو روکنا ہوتا ہے. بھائی فَإِنَّهَا عِبَادَتُكَ فِنْ عَنِ التَّزَوُّجِ وَالْخُرُوجِ, اس لیے کیونکہ یہ عدت جو ہے یہ گھر سے باہر نکلنے سے اور نکاح کرنے سے رکنے کی عبادت ہے. فَلَا تَتَدَاخَلَانِ, لہذا ان دونوں میں باہم تداخل نہیں ہوگا. كَالصَّوْمَيْنِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ, جیسے دو روزے ایک دن میں. جیسے ایک دن میں دو روزے نہیں ہو سکتے, اسی طرح ایک وقت کے اندر دو عدتیں نہیں ہو سکتی. بھائی الگ الگ گزارنا پڑے گا. بھائی ولنا, اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان المقصود التعرف عن فراغ الرحم, کہ عدت کے ذریعے مقصود جو ہوتا ہے وہ رحم کے فارغ ہونے کو جاننا ہوتا ہے. عدت کے ذریعے مقصود رحم کے فارغ ہونے کو جاننا ہے. وقد حصل بالواحدتی, اور تحقیق یہ جاننا تو حاصل ہو جاتا ہے بالواحدتی, ایک ہی عدت سے. ایک عدت سے پتا چل جاتا ہے رحم کے فارغ ہونے کا. فتتداخلانی, تو لہذا دونوں عدتوں کا آپس میں تداخل ہوگا. بھائی ومعنى العبادت تابع, اور باقی امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ یہ عدت یہ تو عبادت ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں آپ کی بات تسلیم ہے, یہ عبادت ہے, لیکن یہ عبادت کا معنی اس کے اندر تابع ہے. بھائی اصل رحم کی صفائی کا جاننا مقصود ہے, اور عبادت کا معنی اس میں تابع ہے. چنانچہ اسی لیے آگے آپ کو صاحب ہدایہ بتلائیں گے. ادھر دیکھیے, ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور اس عورت کو طلاق کی خبر نہیں پہنچی. چار پانچ مہینے بعد اس کو خبر پہنچی, اس دوران تین حیض گزر گئے تھے. تو یاد رکھو فقہا فرماتے ہیں کہ جس وقت طلاق دی تھی اس وقت سے عدت شروع ہو گئی تھی. عورت کو چاہے علم ہو یا علم نہ ہو, تین حیض گزر چکے ہیں تو عدت پوری ہو چکی ہے. اب اس کو خبر جیسے ہی ملی ہے یہ فوراً آگے نکاح کر سکتی ہے. یا اسی طرح ایک شخص ہے, اس کا انتقال ہو گیا, سفر پر گیا ہوا تھا, اور اس کے انتقال کی وجہ سے بیوی پر عدت آتی ہے چار مہینے دس دن, لیکن کوئی خبر لانے والا نہیں تھا, چھ سات مہینوں بعد خبر یہاں پہنچی. تو اس دوران دیکھو اس کی عدت چار مہینے دس دن گزر چکی ہے. تو فقہا فرماتے ہیں کہ جیسے ہی عورت کو خبر ملی اور پتا چل گیا کہ اس کی وفات کے بعد اتنا عرصہ گزر چکا ہے, وہ فوراً آگے نکاح کر سکتی ہے جب عدت وفات گزر چکی ہے. بھائی معلوم ہوا عدت کا علم ہو یا نہ ہو پھر بھی عدت گزر جاتی ہے. حالانکہ عبادت تو بغیر نیت کے نہیں ہو سکتی. بھائی کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اس کو باقاعدہ روزے کی نیت کرنا پڑے گی, ورنہ صبح سے شام تک وہ بھوکا پیاسا رہے, بیوی سے الگ رہے, اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا, یہ روزہ نہیں شمار ہوگا. بھائی تو عبادت میں کیا ضروری ہے؟
नीयत जरूरी है। और नीस ये जो औरत ने इद्दत गुजारी
जी।
ये तीन हैज गुजारे हैं या खावन की वफात के बाद चार महीने दस दिन गुजारे हैं और इसको पता ही नहीं था कि मुझे तलाक मिल चुकी है या मेरे खावन का इंतकाल हो चुका है
जी।
तो इद्दत के दौरान तो औरत के लिए घर से निकलना मना होता है, हराम है उसके लिए घर से निकलना इद्दत के दौरान
जी।
और इस औरत को तो पता ही नहीं था कि मुझे खावन तलाक दे चुका है या उसका इंतकाल हो चुका है, ये तो इस दौरान घर से निकलती रही भाई। हालांकि घर से न निकलना ये तो बाकायदा रुकन है इस इद्दत का
जी।
और कोई इबादत बगैर रुकन के नहीं पाई जा सकती
जी।
तो यहां पर देखो एक औरत को खावन ने तलाक दी और इद्दत के बाद उसको जाकर खबर मिली तो फुकाहा फरमाते हैं इद्दत गुजर गई। इसी तरह एक औरत के खावन का इंतकाल हुआ और इद्दत के बाद जाकर औरत को खबर मिली तो फुकाहा फरमाते हैं कि इद्दत गुजर चुकी है। मालूम हुआ यह इद्दत इबादत तो है लेकिन इबादत का माना इसमें ताबेअ है, इबादत का माना इसमें ताबे है, वरना बगैर नीयत के इद्दत कैसे गुजर सकती थी। और नीज बगैर रुकन के, क्योंकि पाबंदी थी घर से ना निकले और ये तो निकलती रही है, तो बगैर रुकन के तो इद्दत नहीं हो सकती। अगर इद्दत इबादत मकसूदा होती तो फिर बगैर नीयत के इद्दत गुजर नहीं सकती थी भाई, उसको बाकायदा नीयत करना पड़ेगी। या रुकन के बगैर इद्दत का वजूद नहीं हो सकता भाई, जैसे रोजे का वजूद खाने और पीने के साथ नहीं हो सकता भाई। तो कहते हैं वह मानल इबादत ताबिउन, और इबादत का माना इसके अंदर ताबिअ है। अला तरा अन्नहा तनकजी बिदून इल्मिहा, क्या आप देखते नहीं कि यह इद्दत गुजर जाती है औरत के इलम के बगैर ही, यानी बगैर नीयत के गुजर जाती है। वह मातर की हलकफा, और साथ औरत के तर्क करने के, अलकफा रुकने को, घर से बाहर निकलने को उसने तर्क कर रखा था, तो तर्क कफ के बावजूद इद्दत गुजर रही है। हालांकि रुकन के बगैर तो इबादत का तसव्वुर नहीं हो सकता, जैसे नमाज है भाई, नमाज के अंदर रुकू और सजदा नहीं तो अरकान नहीं तो फिर नमाज भी नहीं भाई। दलील समझ में आ गई। आगे देखिए वल मुअतद्दत अन वफातिन इदा वुतिअत बिशुभतिन। सूरत मसला ये, एक औरत है वो इद्दत वफात गुजार रही है चार महीने दस दिन और इस दौरान इसके साथ वती बिशुबा कर ली गई। तो कहते हैं इस सूरत के अंदर आप ये उसी इद्दत वफात को गुजारेगी और उसके अंदर ही वो उस वती भी शुबा की वजह से जो इद्दत आई है उसको भी शुमार करेगी
जी।
तो अगर वो चार महीने दस दिन के अंदर तीन हैज भी पूरे हो गए तो दोनों इद्दतें पूरी हो जाएंगी, वरना जितने हैज उस चार महीने दस दिन में पूरे हो गए वो शुमार कर ले और जो बाकी है वो इस चार महीने दस दिन के बाद पूरे कर ले। तो कहते हैं वल मुअतद्दत अन वफातिन, और वो औरत जो इद्दत गुजार रही है खावन की वफात से, इजावुतिअत बिशुबहतिन, जब इसके साथ वती भी शुबा कर ली गई, तअतद्दु बिशुहूरी, तो ये इद्दत महीनों से गुजारेगी, यानी वही चार महीने दस दिन, वतहतसिबु बिमा तराहु मिनल हैज फीहा, और वो शुमार करेगी वो उस हैज को जिसको ये देखेगी, फीहा, वो उसको भी इसी इन्हीं महीनों में शुमार करेगी, यानी दोनों इद्दतें पूरी करेगी, चार महीने दस दिन भी और तीन हैज भी, लेकिन तदाखुल हो जाएगा। तो कहते हैं तहकीकन लितदाखुल बिकद्रिल इम्कान, तदाखुल को साबित करने के लिए बिकद्रिल इम्कान, जिस कदर मुमकिन हो सके। आगे देखिए वब्तिदा उल इद्दत फि तलाक याकीब तलाक वफिल वफात याकीब अल वफात, और इद्दत की इब्तिदा जो है तलाक के अंदर वो तलाक के बाद होगी, वफिल वफात याकीब अल वफात, और वफात की इद्दत के अंदर उसकी इब्तिदा जो है वफात के बाद होगी। फइन लम तअलम बित्तलाक या बिल वफाती, अगर औरत को पता ना चला तलाक या वफात का, हत्ता मजत मुद्दतुल इद्दती, यहां तक कि मुद्दत इद्दत गुजर गई उसके बाद जाकर इसको पता चला, फकदिन कजत इद्दतुहा, तो तहकीक इसकी इद्दत गुजर चुकी है, लिअन्न सबब वुजूब इद्दत तलाक अविल वफातु, इसलिए क्योंकि इस इद्दत के वजूब का सबब या तो तलाक है या वफात है, फयुअतबर इब्तिदा उहा मिन वक्त वजूद इस सबबी, तो लिहाजा इस इद्दत की इब्तिदा का एतबार किया जाएगा सबब के पाए जाने के वक्त से, जब तलाक हुई है इद्दत शुरू हो गई चाहे औरत को पता है या नहीं, जब वफात हुई है तो इद्दत शुरू हो गई, क्योंकि तलाक और वफात इसके सबब हैं, जब सबब पाया गया तो इद्दत शुरू हो गई। वह मशायखुना रहमहुल्लाह ताला युफ्तून फि तलाक अन इब्तिदाअहा मिन वक्तिल इक़रारी नफ्यन लितुहमतिल मुआज़अती, यहां से साहिब हिदायत बतला रहे हैं कि हमारे फुकाहा जो हैं यानी बुखारा और समरकंद के फुकाहा जो हैं यानी मुताखिरीन फुकाहा जो हैं वो फतवा देते हैं अगर खावंद और बीवी इकरार कर लें तलाक और इद्दत के गुजरने का। खावंद ने लोगों के सामने बीवी से कहा कि मैं तो तुम्हें तलाक भी दे चुका हूं और तुम्हारी इद्दत भी गुजर चुकी है, तो इस सूरत में हमारे फुकाहा फतवा इस पर देते हैं कि जिस वक्त इकरार किया है अब इद्दत औरत शुमार करेगी। ये तो कह रहे हैं कि इद्दत गुजर चुकी है लेकिन उसका कोई एतबार नहीं है। खावन तो कह रहे हैं मैंने तलाक भी दे दी थी इद्दत भी गुजर गई थी, लेकिन जिस वक्त इकरार किया है अब औरत इद्दत शुमार करेगी जी। और याद रखना उलमा फरमाते हैं कि मशाइख बुखारा और समरकंद का ये फतवा हमारे तमाम अइम्मा के खिलाफ है, तमाम सहाबा और ताबईन के खिलाफ है। लेकिन ये वो तोहमत के मकाम पर फरमाते हैं, हर जगह नहीं भाई। अगर तोहमत का मकाम नहीं है वहां पर खावंद कहता है कि मैंने तुझे तलाक भी दे दी थी और तेरी इद्दत भी गुजर गई थी और औरत भी कह रही है कि हां ऐसा ही है, तो वहां इकरार को कबूल किया जाएगा, औरत फौरन आगे निकाह कर सकती है। लेकिन जहां दिलों में बदगुमानी आए वहां पर इस बात को कबूल नहीं किया जाएगा। मसलन पीछे मसला गुजरा था, खावंद मरजुल मौत में मुबतला है और उस मरजुल मौत में लोगों के सामने कहता है अपनी बीवी को कि तुझे तो मैंने तलाक भी दे दी थी और तेरी तो इद्दत भी गुजर चुकी है, और फिर उसके बाद खावंद बीवी के लिए वसीयत भी कर देता है कि मेरे मरने के बाद 50 लाख रुपए इसको दे देना, तो दिलों में बदगुमानी आती है, मालूम हुआ ये बीवी को फायदा पहुंचाना चाहता था। मसलन इस शख्स की 3 या 4 बीवियां हैं और औलाद हो तो बीवी को 8वां हिस्सा मिलता है, और अगर बीवियां 2 या 3 या 4 हैं तो उस 1/8 हिस्से को आपस में तकसीम करेंगी, तो देखो वो 8वें का भी निसफ या सुलुस बनेगा या रुबा बनेगा भाई, तो बहुत थोड़ा सा हिस्सा बीवी को मिलेगा। और आप जानते हैं कि वारिस के लिए वसीयत भी नहीं जायज और इकरार भी नहीं जायज, तो आप दिलों में बदगुमानी आती है कि मरजुल मौत के अंदर खावंद कह रहे हैं कि मैंने तुझे तलाक भी दे दी थी और तेरी इद्दत भी गुजर चुकी है, और बीवी भी कहती है आप सच कह रहे हो, मालूम हुआ दोनों ने आपस में गठजोड़ कर लिया है, खावंद उसको फायदा पहुंचाना चाहता है, तो दोनों मिलकर ये तलाक और इद्दत के गुजरने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब तलाक भी मिल चुकी और इद्दत भी गुजर चुकी तो औरत तो अजनबिया बन गई, अब वारिसा नहीं, तो अब खावंद के लिए इकरार और वसीयत का दरवाजा खुल जाएगा। तो लिहाजा दिलों में बदगुमानी आती है तो इस सूरत में हमारे उलमा फरमाते हैं कि इस औरत की इद्दत इकरार के वक्त से शुमार की जाएगी, और अगर ये इद्दत के अंदर खावंद का इंतकाल हो गया तो फिर औरत को मीरास और वसीयत में से जो कमतर होगा वो दिया जाएगा भाई। तो लिहाजा कहते हैं हमारे मशाइख और हमारे फुकाहा जो हैं उन्होंने फतवा दिया है कि जिस वक्त खावंद और बीवी इकरार करें तो उस वक्त से इद्दत शुमार की जाएगी। लेकिन याद रखना ये उस मकाम की बात हो रही है जहां दिलों में बदगुमानी आती हो, जहां दोनों के गठजोड़ का इम्कान हो, और जहां दोनों के गठजोड़ का इम्कान नहीं है या जहां दिलों में बदगुमानी नहीं आती तो वहां पर उनकी बात को तस्लीम किया जाएगा। तो कहते हैं वह मशाइखुना रहिमहुल्लाहु ताला युफ्तूना फी तलाकी, और हमारे फुकाहा जो हैं यानी बुखारा और समरकंद के जो उलमा हैं युफ्तूना फी तलाकी वो फतवा देते हैं तलाक के बारे में कि अन्नब्तिदा अहम मिन वक्त अल इकरारी, कि इसकी इद्दत की इब्तिदा जो है इकरार के वक्त से होगी, नफ़यन लितोहमतिल मुवाज़ाती, नफी करने के लिए बाहम इत्तेफाक की तोहमत की। मुवाज़ात का माना है मुआफ़क़त, दोनों का एक दूसरे के साथ मुआफिक हो जाना कि दोनों ने आपस में गठजोड़ कर लिया होगा, तो ये आपस के गठजोड़ की तोहमत की नफी के लिए तवज्जो है, यह माना है नफ़यन लितोहमतिल मुआज़ाती, बाहमी मुआफ़क़त की तोहमत की नफी के लिए। तो आम अहवाल के अंदर यह फतवा नहीं दिया जाएगा, आम अहवाल के अंदर इनकी यह बात कबूल कर ली जाएगी। और जहां दिलों में बदगुमानी आती हो कि यह खावंद मसलन मरज़ुल मौत में और फायदा पहुंचाना चाहता है तो फिर इस सूरत के अंदर इकरार के वक्त से ही इद्दत को शुमार किया जाएगा।
वल इद्दत फिन निकाह अल फासिद अकीबत तफरीक औ अज़्म अल वाती अला तर्क वत्इहा वल इद्दत फिन निकाह अल फासिद अकीबत तफरीक औ अज़्म अल वाती अला तर्क वत्इहा।
भाई मैंने आपको बतलाया कि निकाह फासिद और बातिल दोनों एक ही चीज है, फासिद कह लें या बातिल कह लें एक ही बात है, यानी यह शरअन निकाह है ही नहीं, इसका एतबार ही कोई नहीं और इसका कोई हुक्म नहीं आता जब तक खावन सोहबत ना कर ले, जब सोहबत कर लेगा अब उसके बाद निकाह फासिद के अहकाम आ जाएंगे। अब मसला यह निकाह फासिद किया है मसलन एक शख्स और एक औरत ने, मसलन बगैर गवाहों के निकाह कर लिया या औरत की इद्दत में निकाह कर लिया वगैरह, तो इसमें जरूरी है कि जब इनको मसले का पता चल गया तो अब ये दोनों एक दूसरे को छोड़ने का पक्का इरादा कर लें और जुबान से उसका इजहार करें, क्योंकि दिल की बात का तो हमें पता नहीं चल सकता, जुबान से इजहार करें कि वो शख्स क्या कहे, मैंने इसको पक्का छोड़ दिया। तलाक तो नहीं कहेगा क्योंकि निकाह ही नहीं हुआ, निकाह होता तो तलाक कहता, तो बस एक दूसरे को तर्क करने का इजहार कर दें कि हमने एक दूसरे को तर्क कर दिया, छोड़ दिया। और अगर ये एक दूसरे को तर्क नहीं करते, हमने मसला भी बतला दिया, तो फिर इनको काजी के पास ले जाया जाएगा और काजी इनमें जुदाई करवा देगा कि तुम्हारा निकाह नहीं हुआ, बगैर गवाहों के निकाह नहीं होता। तो अब हमारे नजदीक जब काजी इनमें जुदाई करवा देगा या ये दोनों एक दूसरे को छोड़ने का पक्का इरादा कर देंगे तो अब इद्दत शुरू हो जाएगी। अब औरत जो है वो तीन हैज गुजारेगी और फिर उसके बाद वो जहां चाहे निकाह कर सकती है। जबकि इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते हैं नहीं, आखिरी वती से ही उसकी इद्दत शुमार की जाएगी। मसलन ऐसी सूरत थी, इन दोनों ने निकाह किया है लेकिन इकट्ठे हमेशा इकट्ठे नहीं रहे, जब इन्होंने ये निकाह फासिद किया था तो एक महीना ये दोनों इकट्ठे रहे, उसके बाद खावन दो तीन महीने के लिए कहीं सफर पे चला गया है, अब वापस आया है और अभी बीवी के पास नहीं गया, लोगों ने उसको मसला बताया और काजी ने उनमें तफरीक करवा दी या इसने छोड़ने का पक्का इरादा कर दिया, तो इमाम जुफर फरमाते आखिरी वती का एतबार है और आखिरी वती को तो कुछ मुद्दत गुजर चुकी है, कुछ हैज बीच में गुजर चुके हैं, तो अगर वो हैज तीन हो चुके हैं तो जुदाई आ गई, अब वो औरत आगे जहां चाहे निकाह कर सकती है। जबकि हमारे नजदीक नहीं, जब खावन छोड़ने का पक्का इरादा कर लेगा या जब काजी जुदाई करवा देगा उसके बाद इद्दत शुरू होगी, उससे पहले इद्दत नहीं भाई। तो कहते हैं वल इद्दतु फिन निकाह अल फासिद अकीबत तफरीकी, और निकाह फासिद के अंदर जो इद्दत होती है वो जुदाई के बाद होती है, यानी जब काजी तफरीक करवाए, काजी जुदाई करवाए। औ अज़्म अल वाती अला तर्क वत्इहा, अज़्म कहते हैं पुख्ता इरादे को, औ अज़्म अल वाती या वती करने वाला पक्का इरादा कर ले, अला तर्क वत्इहा इसकी वती के तर्क पर, कि मैंने इसे वती अब तर्क कर दी, पक्का इरादा कर ले। और इरादा तो दिल की बात है, दिल का तो हमें पता नहीं चल सकता, यानी वो जुबान से इजहार करे इसका, तो जब काजी जुदाई करवा देगा या वो वती करने वाला पक्का इरादा कर लेगा अब इद्दत शुरू हो जाएगी। वकाल जुफर रहमहुल्लाह, और इमाम जुफर रहमहुल्लाह फरमाते हैं मिन आखिरिल वत आती, कि इसकी आखिरी वती से इद्दत शुरू हो जाएगी, आखिरी वती से इद्दत शुमार करेंगे, जब जुदाई का इरादा किया उस वक्त नहीं बल्कि पहले से इद्दत को शुमार करेंगे। लिअन्न अल-वत्अ हुवा सबबुल मूजिबू, इसलिए क्योंकि वती जो है वही सबबुल मूजिबू, वही सबब है जो इस इद्दत को साबित करने वाला है। यह इद्दत क्यों आई है औरत पर निकाह फासिद में, इस शख्स के वती करने की वजह से, यह वती न करता फिर तो निकाह फासिद का कोई हुक्म ही नहीं था, वो तो कल आदम था जैसे हुआ ही नहीं, तो इस वती की वजह से यह इद्दत आई है। तो कहते हैं इमाम जुफर आखिरी वती से इद्दत शुमार होगी, लिअन्न अल-वत्अ हुवा सबबुल मूजिबु, इसलिए क्योंकि वती जो है वही इस इद्दत को साबित करने का सबब है। वलना, हमारी दलील यह है कि अन्न कुल्ल वत्इन वुजिद फिल अक्दिल फासिद यजरी मजरल वत्अतिल वाहिदति, हम कहते हैं हमारी दलील यह है कि याद रखो अक्दे फासिद के अंदर जितनी भी वतियां पाई जाएंगी वो सारी एक ही वती के हुक्म में है। निकाह फासिद में जितनी मर्तबा भी खावन ने वती की है वो सारी एक ही वती के हुक्म में है। भाई क्यों एक वती के हुक्म में क्यों है, कहते हैं इसलिए क्योंकि इन सब की निस्बत उस आकद की तरफ है। ये खावन इसे वती क्यों कर रहा है, ये समझता है मेरा निकाह हो चुका है, यानी शुबा निकाह की वजह से वती कर रहा है, तो और शुबा निकाह वो तो आकद तो एक ही किया था इन दोनों ने आपस में, तो जब आकद एक किया था तो यह सारी वती जिस जो इसने की है इस दौरान वह एक ही वती के हुक्म में है। अगर यह एक वती के हुक्म में नहीं फिर तो हमने आपको जाब्ता बतलाया है कि ममलिकत इस्लामिया में कोई शख्स किसी औरत से वती करे तो वहां या महर आता है या हद आती है। तो यहां अगर हर वती अलग अलग शुमार करेंगे तो फिर तो हर वती की वजह से खावन पर महर आना चाहिए, लेकिन बिल इत्तेफाक यहां खावन पर एक ही महर आएगा। मालूम हुआ जिस कदर वती भी की है खावन ने वो सब एक ही वती के हुक्म में है भाई। तो कहते हैं इसीलिए इन सब के मुकाबले में एक ही महर अदा किया जाता है। और नीज जब तक इनमें जुदाई ना करवाएं या जब तक एक दूसरे को छोड़ने का पक्का इरादा नहीं करेंगे उस वक्त तक और वती होने का भी इम्कान है भाई
जी।
इमाम जुफर क्या फरमाते हैं? इमाम जुफर फरमाते हैं आखिरी वती से इद्दत को शुमार करना शुरू कर देंगे। मसलन मैंने मिसाल जिक्र की, एक शख्स ने एक औरत से निकाह फासिद किया है, एक महीना उसके पास रहा या दो महीने उसके पास रहा, फिर वो सफर पर चला गया, अब वो पांच महीने बाद आया है लेकिन अभी बीवी के पास नहीं गया, उसको मसले का पता चल गया कि हमारा तो निकाह ही नहीं हुआ, हमने तो बगैर गवाहों के निकाह किया था। तो अब इमाम जुफर फरमाते हैं आखिरी वती से इद्दत का शुमार करेंगे और तीन हैज अगर गुजर चुके हैं तो इद्दत पूरी हो चुकी, अब औरत जहां चाहे निकाह कर ले। जबकि हमारे नजदीक यह आदमी इस वक्त पक्का इरादा कर रहा है इस औरत को छोड़ने का, इस औरत को छोड़ने का और इसकी वती को छोड़ने का पक्का इरादा यह शख्स इस वक्त कर रहा है, लिहाजा इस वक्त से इद्दत शुमार करेंगे। क्योंकि जब तक यह शख्स पक्का इरादा नहीं करता या काजी इनमें जुदाई नहीं करवाता तब तक और वती का भी इम्कान है तो लिहाजा आखिरी वती का पता ही तब चलेगा जब ये दोनों में जुदाई करवा दी जाएगी या दोनों एक दूसरे को छोड़ने का पक्का इरादा कर लेंगे। जब तक ये एक दूसरे को छोड़ने का इरादा नहीं करते आखिरी वती का तो पता ही नहीं है भाई, क्योंकि हो सकता है आगे भी वो कर ले, क्योंकि इनका क्या ख्याल है हमारा निकाह हो चुका है। तो यूं कहो हासिल कलाम ये, इमाम जुफर ने कहा था कि आखिरी वती का एतबार किया जाएगा क्योंकि यह इद्दत वती की वजह से आई है भाई, वती ना करता तो कोई इद्दत भी ना आती। हम कहते हैं हमें आपकी बात तस्लीम है कि इद्दत वती की वजह से आई है और यह इद्दत आखिरी वती से शुरू होगी, लेकिन आखिरी वती का पता ही नहीं चल सकता जब तक एक दूसरे को छोड़ने का इरादा ना कर दें। जब एक दूसरे को छोड़ने का इरादा कर देंगे अब पता चल गया कि आखिरी वती हो चुकी है। तो वलाना हमारी दलील यह है कि नकुल्ला वक्त इन वजीद फिल अक्दिल फासिदी, के हर ऐसी वती जो अक्दे फासिद के अंदर पाई जाए, यजरी मजरल वक्त अतिल वाहिदती, ये कायम मकाम है एक ही वती के, लिस्तेना दिल कुल इला हुक्मी अक्द वाहिदिन, इसलिए क्योंकि इनमें से हर एक मनसूब है। इस्तेनाद का क्या माना? मनसूब होना। लिस्तेना दिल कुल, क्योंकि इनमें से हर वती जो है उस वो मनसूब है, उसकी निस्बत हो रही है इला हुक्मी अक्द वाहिदिन, एक ही आकद के हुक्म की तरफ, एक ही आकद का यह हुक्म है, यानी यह जो इनको शुबा निकाह हुआ है उसी की तरफ निस्बत हो रही है, उसकी वजह से यह सारी वती हो रही है। वलिहादा युक्तफा, और इसीलिए इक्तफा किया जाएगा फुल फिल कुल इन तमाम वतियों में भी महरिम वाहिदिन, एक ही महर पर, फकबल मुतारकति अविल आजमी, तो बाहम एक दूसरे को छोड़ने से पहले, मुतारकत बाबे मुफाला है बाहम एक दूसरे को छोड़ना, तो कहते हैं फकबल मुतारकती अविल आजमी, तो लिहाजा बाहम एक दूसरे को छोड़ने या पक्के इरादे से पहले, ला तस्बुतुल इद्दतु, इद्दत साबित नहीं हो सकती, मा जवाजी वजूदी गैरी ही, साथ जायज होने और वती के भी, क्योंकि मुमकिन है और भी ये वती कर लें। अब हमें आपकी बात तस्लीम है, इद्दत कब से शुमार होनी चाहिए? आखिरी वती से, लेकिन आखिरी वती का पता ही नहीं चल सकता जब तक पक्का इरादा नहीं करेंगे, इनमें जुदाई नहीं आएगी। वली अन्न तमक कुना अला वजह शुभती, ये दूसरी दलील दे रहे हैं
जी।
ये हमारी तरफ से दूसरी दलील है। हम कहते हैं कि वती जो है खावंद और बीवी के दरमियान एक खुफिया मामला है, हमें उसका इलम नहीं हो सकता। जब एक हुक्म की इल्लत का पता ना चल सके तो सबब को उसके कायम मकाम कर दिया जाता है
जी।
किसको? सबब को। जैसे नींद के अंदर भाई वजू टूटने का हुक्म लगाया जाता है, जब कोई शख्स टेक लगाकर सो जाए या लेट कर सो जाए, हालांकि वजू तो खुरूज नजासत से टूटता है लेकिन नींद की हालत में चूंकि खुरूज नजासत होगा और इंसान सोया हुआ है उसको पता ही नहीं चलेगा, तो जब इल्लत का पता ना चल सका तो इस इल्लत का जो सबब था यानी नींद उसी पर हुक्म का दारोमदार कर दिया गया। जो शख्स भी टेक लगाकर सो जाए या लेट कर सो जाए तो उस पर वजू टूटने का हुक्म लगा दिया जाएगा। तो यहां पर भी ये जो वती है मियां और बीबी के दरमियान एक खुफिया मामला है और इसका हमें पता नहीं चल सकता, तो इस वती का जो सबब है यानी ये जो शुबा निकाह है, ये शुबा निकाह जो है इस पर हुक्म का मदार हो जाएगा। जब तक ये शुबा निकाह है तो यूं कहेंगे वती मौजूद है, और जब शुबा निकाह खत्म होगा तब हम कहेंगे अब वती खत्म। और शुबा निकाह कैसे खत्म होगा? जब काजी जुदाई करवा देगा या दोनों एक दूसरे को छोड़ने का पक्का इरादा है तो शुबा निकाह खत्म। जब बात समझ में आ गए तो कहते हैं वाली अन्न तमक्कुन अला वजही शुभति, और इसलिए क्योंकि खावंद का कादिर होना वती पर अला वजही शुभति शुबा के तरीके पर, खावंद वती पर कादिर है किस तरीके पर? शुबा के यानी शुबा निकाह के तरीके पर, इन दोनों को शुबा है कि शायद हमारा निकाह हो चुका है। तो कहते हैं वाली अन्न तमक्कुन अला वजही शुभति, इसलिए क्योंकि खावंद का वती पर कादिर होना शुबा निकाह के तरीके पर, उकीम मकाम हकीकतिल वती, इसको हकीकत वती के कायम मकाम कर दिया गया, लिखफा ही, इसलिए क्योंकि वती तो खफी है वो तो पोशीदा है उसका हमें पता नहीं चल सकता। व मिसासिल हाजती, सवाल पैदा होता है कि भाई वती बेशक खावंद और बीवी का पोशीदा मामला है लेकिन इद्दत औरत ने गुजारनी है, खावंद और बीवी को तो पता है ना कि हमने आखिरी वती इस वक्त की थी, हमने आखिरी वती इस वक्त की थी, लिहाजा उन पर तो बात पोशीदा नहीं है, हमारे लिए तो पोशीदा है, इन पर तो बात पोशीदा नहीं, इद्दत तो इस औरत ने गुजारनी है। कहते हैं भाई आपने कहा खावंद और बीवी के अलावा किसी और को हाजत ही नहीं है इसकी इद्दत के जानने की। कहते हैं नहीं, कोई और शख्स जो इस औरत से निकाह की ख्वाहिश रखता हो तो उसको तो हाजत है, वो तो जानना चाहता है कि इसकी इद्दत कब शुरू होगी और कब खत्म होगी, लिहाजा जब तक एक दूसरे को छोड़ते नहीं उस वक्त तक वती पर कुदरत मौजूद है, और वती पर कुदरत ये हकीकत वती के कायम मकाम हमने कर दी है, तो गोया हकीकतन उस वक्त तक वती मौजूद है, और जब काजी उनमें तफरीक करवा देगा या उन वो पक्का इरादा कर लेंगे एक दूसरे को छोड़ने का, जुबान से इजहार कर देंगे तो आप मालूम हुआ उसकी इद्दत शुरू हो गई है, अब इससे सबको पता चल जाएगा। भाई फिर देख लीजिए तर्जमा, कहते हैं वली अन्न तमक्कुन अला वजही शुबहति, इसलिए क्योंकि शुबा निकाह के तरीके पर वती पर कादिर होना, ये जो वती पर कुदरत है, उकीम मकाम हकीकतिल वती, इसको हकीकत वती के कायम मकाम कर दिया गया, लिखफाईही वती के पोशीदा होने की वजह से, व मिसासिल हाजति इला मारिफतिल हुक्मी, और नीज हाजत के पेश आने की वजह से, इला मारिफतिल हुक्मी, इस औरत के हुक्म को जानने के लिए, फी हक गैरी ही खावन के अलावा के हक में, खावन के अलावा कोई और इस औरत के हुक्म को जानना चाहता है कि कब यह हलाल होगी निकाह के लिए, तो हाजत है इस हुक्म को जानने की, तो लिहाजा जब ये जुदाई इख्तियार कर लेंगे तो अब मालूम हुआ कि अब वती नहीं है भाई, अब इद्दत शुरू हो चुकी है भाई, तो वो इद्दत के बाद फिर कोई शख्स भी इसे निकाह कर सकता है। वह इदा कालतिल मुअतद्दतुन क़ज़त इद्दती वकद्दबह ज़ौजु कानल क़ौलु क़ौलहा मअल यमीन, सूरत मसला ये, एक औरत इद्दत गुजार रही थी और उसने कह दिया कि मेरी इद्दत गुजर गई है और खावंद उसको झुटला रहा है, तो अब किसका कौल मोतबर होगा? कहते हैं भाई इद्दत के गुजरने का पता औरत ही को हो सकता है, लिहाजा औरत का कौल मोतबर है लेकिन उसको कसम खाना पड़ेगी, क्योंकि वो औरत इस मसले में अमीन है और अमीन को जब झुटलाया जाए तो उसका कौल कसम के साथ मोतबर होता है भाई। तो कहते हैं वइदा कालतिल मुअतद्दतु, और जब इद्दत गुजारने वाली औरत ने कहा इन कजत इद्दती, मेरी इद्दत गुजर गई, वकद्दबह ज़ौजु, और खावन ने उसको झुटलाया, कान अल कौलु कौलहा मअल यमीनी, तो वो कौल जो मोतबर है वो इस औरत का कौल है साथ कसम के, लेकिन ये जरूरी है मुद्दत इसका एहतमाल रखती हो,
مدت اس کا احتمال رکھتی ہو جس میں عدت گزر سکے. لانہا امینت فی ذالکا, اس لیے کیونکہ یہ عورت جو ہے یہ اس اپنے قول کے اندر امین ہے, امانت دار ہے. وقد تہمت بالکذیبی, اور اس پر تہمت لگائی گئی جھوٹ کے ساتھ, خاون تکذیب کر رہا ہے تو اس پر تہمت لگائی گئی ہے جھوٹ کی. فتحلف, تو لہذا اس کو قسم دی جائے گی. کل مودعی, جیسے مودع وہ شخص جس کے پاس امانت رکھوائی جائے. او دعا یو دعو ایداعن کا معنی ہے کسی کے پاس امانت رکھوانا, جیسے کسی شخص نے کسی دوسرے کے پاس اپنی امانت رکھوائی اور پھر بعد میں دونوں کے اندر اختلاف آیا, وہ مودع جس کے پاس امانت رکھوائی گئی وہ کہتا ہے میں نے امانت آپ کو واپس کر دی تھی, آپ مجھ سے لے گئے تھے, اور مودع جس نے امانت رکھوائی تھی وہ کہتا ہے نہیں میں نے آپ سے ابھی تک اپنی امانت وصول نہیں کی. تو دونوں میں اختلاف آیا تو مسئلہ قاضی کے پاس چلا گیا. تو یاد رکھو اس صورت میں مودع یعنی وہ جو امین ہے جس کے پاس امانت رکھوائی گئی تھی اس کا قول معتبر ہے ساتھ قسم کے. بھائی کل مودعی, جیسے کہ مودع ہے یعنی وہ شخص جس کے پاس امانت رکھوائی جائے, جب اس کو جھٹلایا جائے تو اس کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہوتا ہے. وہ اذا طلق الرجل امراته طلاقا بائنا ثم تزوجها في عدتها, صورت مسئلہ یہ بھائی یاد رکھو, ایک شخص ہے اس نے اپنی بیوی کو طلاق بائن دے دی, توجہ ہے, ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق بائن دے دی, طلاق بائن ہوتے ہی نکاح ٹوٹ گیا, اب خاوند کے ساتھ صحبت جائز نہیں, اور پھر عدت کے اندر اسی خاوند نے دوبارہ اس عورت سے نکاح کر لیا, رجوع تو ہو نہیں سکتا تو دوبارہ نکاح کر لیا, اور دوبارہ نکاح کرنے کے بعد پھر خاوند نے بغیر صحبت کے ہی پھر اس عورت کو طلاق دے دی, پھر اس عورت کو طلاق دے دی. تو اس صورت میں یاد رکھو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عورت وہی پہلی عدت پوری کرے گی, کچھ عدت گزر گئی تھی کچھ باقی تھی تو وہی باقی عدت پوری کر لے گی اور پھر جہاں چاہے نکاح کر لے. بھائی کیوں پہلی عدت کیوں پوری کرے گی, دوسری عدت کیوں نہیں گزارے گی؟ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ دوسرے نکاح کے بعد خاوند نے صحبت نہیں کی, تو دوسرے نکاح میں یہ غیر مدخول بہا ہے اور غیر مدخول بہا پر کوئی عدت نہیں ہوتی, توجہ ہے, لہذا اس دوسرے نکاح کی وجہ سے اس پر کوئی عدت نہیں آئے گی, یہ وہ اسی پہلی عدت کو پورا کرے گی. جبکہ شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں, اس عورت پر نئی عدت آ گئی, یہ ایک نئی عدت گزارے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی کہتے ہیں وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا, اور جب کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق بائن دے دی, ثم تزوجها في عدتها, پھر اسے عدت کے اندر نکاح کر لیا, وطلقها قبل الدخول بها, اور پھر دوبارہ اس کو طلاق دے دی اس کے ساتھ صحبت کرنے سے پہلے ہی, فعليه مہر کامل. بھئی یاد رکھو یہاں دراصل شیخین اور امام محمد ان کا آپس میں اختلاف ہے. شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے نکاح کے اندر تو خاوند نے صحبت کی تھی, تو وہی پہلے نکاح کی صحبت دوسرے نکاح میں بھی شمار کی جائے گی, دوسرے نکاح میں بھی صحبت شمار کی جائے گی. جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں, پہلے نکاح کی صحبت دوسرے نکاح میں شمار نہیں کی جائے گی, اور دوسرے نکاح میں خاوند نے صحبت نہیں کی تو بغیر صحبت کے طلاق دی ہے, یہ غیر مدخول بہا ہے, لہذا خاوند پر اب نصف مہر آئے گا, کیونکہ صحبت سے پہلے بیوی کو طلاق دے دی جائے تو نصف مہر آتا ہے اور نیز اس پر عدت بھی نہیں ہوتی, لہذا وہی عدت پہلی عدت پوری کرے گی. جبکہ شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے نکاح کے اندر جو صحبت تھی وہ دوسرے نکاح کے اندر بھی صحبت شمار ہوگی, گویا دوسرے نکاح کے بعد بھی صحبت پائی گئی, اور جب دوسرے نکاح کے بعد صحبت پائی گئی اور پھر طلاق دی ہے تو پورا مہر بھی دینا پڑے گا اور نئی عدت بھی دوبارہ سے شمار کرنا پڑے گی. دوبارہ ترجمہ دیکھیے, کہتے ہیں وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا, اور جب کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق بائن دے دے, ثم تزوجها في عدتها, پھر خاوند اسے اس کی عدت کے اندر دوبارہ نکاح کر لے, وطلقها قبل الدخول بها, اور پھر خاوند دوبارہ اس کو طلاق دے دے اس کے ساتھ صحبت کرنے سے پہلے, فعليه مہر کامل, تو اس خاوند پر پورا مہر ہے, گویا صحبت کر چکا ہے یوں سمجھیں گے, تو اس پر پورا مہر
ہے، وعلیہا عدت مستقلت، اور اس عورت پر ایک مستقل عدت ہے، یعنی پوری عدت ہے. وہذا عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ، اور یہ شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے. وقال محمد رحمہ اللہ علیہ نصف المہر، اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس خاوند پر نصف مہر ہے، کیونکہ صحبت سے پہلے طلاق دے دی. وعلیہا اتمام العدت الاولى، اور اس عورت پر وہی پہلی عدت کا پورا کرنا واجب ہے، اسی کو پورا کرے گی، نئی عدت نہیں ہے. لأن هذا طلاق قبل المسيس، امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل آ گئی، کہتے ہیں لأن هذا طلاق قبل المسيس، اس لیے کیونکہ یہ طلاق ہے قبل المسيس، اس کے ساتھ صحبت کرنے سے پہلے. فلا یوجب کمال المہری، لہذا یہ پورے مہر کو واجب نہیں کرے گی. ولستینا فالعدتا، اور نہ یہ عدت کے نیس ہونے کو واجب کرے گی، یہ طلاق نہ تو کامل مہر کو واجب کرے گی اور نہ نئے سرے سے عدت کو واجب کرے گی. و اکمال العدت الاولى انما یجب بالطلاق الاولی. اچھا بھائی، تو پہلی عدت کیوں یہ پورا کرے گی؟ پہلی عدت کیوں پورا کرے گی؟ اس کے بعد تو نکاح آ گیا تھا، جب نکاح آ گیا تو پہلی عدت تو ختم ہو گئی. کہتے ہیں بھائی جب دوسرا نکاح آیا، جب دوسرا نکاح آیا عدت کے اوپر، تو پہلی عدت کا حکام چھپ گیا، ختم نہیں ہوئی پہلی عدت، اس کا حکم چھپ گیا، کیونکہ احتمال تھا خاوند صحبت کر لے گا، جب صحبت کر لے گا تو وہ بالکل ختم ہو جائے گی. لیکن خاوند نے صحبت نہیں کی اور اس کے بغیر ہی پھر دوبارہ طلاق دے دی، تو وہ جو حکم جو پہلی عدت کا چھپ گیا تھا وہ پھر ظاہر ہو گیا. وہ حکم کچھ دیر کے لیے چھپ گیا تھا، خاوند صحبت کر لیتا تو وہ عدت ہی ختم ہو جاتی، لیکن خاوند نے صحبت نہیں کی اور پھر طلاق دے دی، تو وہ جو پہلی عدت کا حکم چھپ گیا تھا وہ دوبارہ ظاہر ہو گیا، اور تو کچھ گزار چکی ہے اور جو باقی ہے اس کو پورا کر لے. تو کہتے ہیں وہ اکمال العدت الاولى، اور کہتے ہیں پہلی عدت کا پورا کرنا، انما یجب بالطلاق الاولی، وہ تو پہلی طلاق کی وجہ سے ہی واجب ہوئی ہے پہلی عدت. الا انه لم يظهر حال تزوج الثاني، مگر یہ کہ اس کا حکم ظاہر نہیں ہوا تھا دوسرے نکاح کی حالت میں. دوسرے نکاح کی حالت میں اس پہلے عدت کا حکام ظاہر نہیں تھا، وہ چھپ گئی تھی. فإذا ارتفع بالطلاق الثاني، پھر جب یہ دوسرا نکاح بھی اٹھ گیا دوسری طلاق کی وجہ سے، ظہر حکمہ، تو اب اس پہلی طلاق کا حکم دوبارہ ظاہر ہو گیا. کما لو اشترى ام ولد ثم اعتقها، جیسے کوئی شخص اپنی ام ولد کو خرید لے پھر اسے آزاد کر دے. صورت مسئلہ یہ، ایک شخص ہے اس نے کسی باندی سے نکاح کیا ہوا ہے اور اس باندی سے اس کی اولاد بھی پیدا ہوئی، اور یہ اولاد جو ہے وہ تو اسی خاوند کی شمار ہوگی، کیونکہ آقا کی اولاد نہیں ہے، خاوند کی اولاد ہے. تو یہ باندی جو ہے یہ اس کی منکوحہ ہے. البتہ ایک بات ہے کہ اس کے جتنے بچے ہوں گے وہ اس باندی کے آقا کے غلام اور باندیاں شمار ہوں گے. یہ باندی جس کی ہے یہ اس کے بچے اسی کے غلام اور باندیاں شمار ہوں گے، کیونکہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بچے آزادی اور غلامی میں ماں کے تابع ہوتے ہیں. ماں آزاد تو بچے آزاد، ماں اگر باندی ہے تو بچے بھی غلام اور باندیاں ہوں گے. تو یہ شخص اس کے اس باندی سے بچے پیدا ہوئے، وہ بچے اس باندی کے آقا کے غلام اور باندیاں ہیں، لیکن بہرحال اس شخص کے بچے تو اس باندی سے ہو چکے ہیں. تو یہ شخص جو ہے اس اپنی منکوحہ کو آقا سے خرید لیتا ہے. تو جب آقا سے باندی کو خریدے گا، آپ نے پڑھا ہے کہ جیسے ہی میاں بیوی میں سے کوئی ایک دوسرے کا مالک بنتا ہے ساتھ ہی نکاح ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ مل کے یمین آ گئی. جب خاوند اپنی بیوی کی پوری ذات کا مالک بن گیا تو مل کے نکاح کی کوئی حاجت نہ رہی، کیونکہ مل کے نکاح میں تو صرف وہ صحبت کا مالک تھا لیکن اب پوری ذات کا مالک بن گیا ہے، تو اب وہ جو کمزور ملکیت تھی وہ ختم ہو گئی. تو خاوند نے اپنی بیوی کو خرید دیا اور خریدتے ہی نکاح ختم ہو گیا، تو خاوند اس کا مالک بن گیا. اب خاوند کے لیے اس کے ساتھ صحبت جائز ہے، اگرچہ اس عورت کا نکاح ٹوٹا ہے. یہ جو باندی ہے اس کا نکاح تھا یا نہیں؟ نکاح ٹوٹا ہے، اور جب نکاح ٹوٹے تو باندی پر کتنی عدت آتی ہے؟ باندی کی عدت دو حیض ہیں، تو دو حیض آئے، لیکن اس آقا کے حق میں یہ جو خاوند جس نے اس کو خرید لیا ہے اس کے حق میں یہ عدت ظاہر نہیں، یہ اس کے ساتھ صحبت کر سکتا ہے، کیونکہ پہلے اس کی بیوی تھی اب یہ مالک بن گیا ہے. तो इस औरत पर इद्दत तो आई है कि इसका निकाह टूटा है, लेकिन अपने आका के हक में यह इद्दत जाहिर नहीं होगी। और नीज ये बांदी अब इसकी उम्मे वलद बन गई, क्यों? क्योंकि इसी बांदी से इसके बच्चे भी हैं, तो ये इसकी उम्मे वलद बन गई। और फिर इस बांदी को इस खावन ने आजाद कर दिया। जब आजाद कर दिया तो आपने पढ़ा है अभी पीछे इस मसला गुजरा कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उम्मे वलद की इद्दत तीन हैज हैं, तो आका ने इसको आजाद कर दिया, तो अब इस औरत पर यह इद्दत भी आ गई। निकाह टूटने के भी दो हैज थे और आजाद किया है तो उसके भी तीन हैज आ गए, तो इनमें तदाखुल हो जाएगा, तो यह औरत तीन हैज गुजारेगी, इसकी इद्दत है। अब यह खावन जिसने इसको खरीद कर आजाद किया है, यह खावन जिसने अपने उम्मे वलद को खरीद कर आजाद किया, ये इसे निकाह करना चाहता है, कहते हैं तीन हैज के बाद निकाह कर सकता है, तीन हैज के बाद निकाह कर सकता है। जिस वक्त इसने बांदी को खरीदा था, निकाह टूट गया था, दो हैज इद्दत आ गई थी, लेकिन खुद इस आका के हक में इद्दत जाहिर नहीं थी क्योंकि ये पहले इसकी मनकूहा थी भाई। लिहाजा औरत पर दो हैज तो आ गए लेकिन आका के लिए सोहबत हराम नहीं। और जब इस आका ने आजाद कर दिया तो अब आजादी वाली इद्दत भी आ गई, तो अब दोनों इद्दतों में तदाखुल होगा और अब यह इद्दत इस आका के यानी इस खावंद के हक में भी जाहिर हो गई। यह अब इस औरत से निकाह करना चाहता है तो अब तीन हैज इंतजार करें, फिर इसके बाद यह इस औरत से निकाह कर सकता है। तो देखो बात यह चल रही थी, मसला यह चल रहा था, एक शख्स ने अपनी बीवी को तलाक बाइन दी है, फिर इद्दत के अंदर दोबारा निकाह कर लिया है और फिर बगैर सोहबत के दोबारा तलाक दे दी है, तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि यह पहली इद्दत को पूरा करेगी। और जब दूसरा निकाह किया था तो कुछ देर के लिए उस तलाक का हुक्म छूप गया था, और फिर जब बगैर सोहबत की तलाक दे दी तो उस तलाक का हुक्म दोबारा जाहिर हुआ, अब यह इद्दत पूरी करेगी। कहते हैं ये इसी तरह है जैसे कोई शख्स, ये जो मसला मैंने जिक्र किया, कोई शख्स अपनी उम्मे वलद को खरीदे और फिर आजाद कर दे, तो देखो जब इसने अपने उम्मे वलद को खरीदा तो निकाह टूट गया, जब निकाह टूटा तो दो हैज इद्दत आए, लेकिन वो खावंद के हक में वो हैज जाहिर नहीं, वो जो आका बन चुका है, वो खावंद जो अब क्या बन चुका है, उसके हक में ये इद्दत जाहिर नहीं है, ये सोहबत कर सकता है, लेकिन जब ये इसको आजाद कर देगा तो अब उनका हुक्म जाहिर हो जाएगा। जैसे यहां पर इद्दत का हुक्म जाहिर हो गया आजाद करने के बाद, तो इसी तरह जो मसला हमने जिक्र किया उसके अंदर भी खावन जब दूसरी तलाक देगा तो पहली इद्दत का हुक्म जाहिर हो जाएगा। दोनों में मुशाबहत समझ में आई, बात समझ में आ गई। तो कहते हैं कमाल अविश्तरा उम्मा वलदिन सुम्मा आतकहा, जैसे कि कोई शख्स अपनी उम्मे वलद को खरीद ले सुम्मा आतकहा और फिर उसको आजाद कर दे, फिर उसको आजाद कर दे। तो इस सूरत के अंदर देखो पहले दो हैज इद्दत आई लेकिन इस खावंद के हक में वो जाहिर नहीं थी, लेकिन जब आजाद कर दिया तो अब वो इद्दत जो है वो जाहिर हो जाएगी खावंद के हक में भी, और एक हैज और भी गुजारेगी क्योंकि उम्मे वलद आजाद हुई है, तो तीन हैजों के बाद ये इसे निकाह कर सकता है। आगे देखिए वलहुमा, अब शेखैन रहमहुमल्लाह की दलील आ गई। शेखैन रहमहुमल्लाह क्या फरमाते थे कि पहले निकाह के अंदर सोहबत यूं ही शुमार करेंगे गोया दूसरे निकाह में भी सोहबत है, और जब दूसरे निकाह में सोहबत आई तो अब महर भी पूरा देना पड़ेगा और इद्दत भी नई मुस्तकिल आ जाएगी। वलहुमा शेखैन रहमहुमल्लाह की दलील यह है कि अन्नहा मकबूजतुन फी यदिही हकीकतन बिलवत अतिल ऊला। भाई देखो पहले समझ लो, शेखैन इसको कयास करते हैं गासिब के मसले पर। गासिब वो शख्स की जो किसी दूसरे की चीज छीन ले, किसी दूसरे की चीज छीन ले उसको क्या कहते हैं, गासिब कहते हैं, किसी की चीज पर कब्जा कर ले। तो एक शख्स है उसने किसी दूसरे की चीज पर कब्जा कर लिया, तो इस पर शरान वाजिब है कि ये उस चीज को वापस लौटाए, फिर बाद में ये गासिब उसी शख्स के पास चला गया जिसकी चीज थी और उसको कहता है कि वो चीज तो मैं आपको वापस नहीं दूंगा, हां आप मेरे साथ बैठ करना चाहते हैं तो बैठ कर ले, मैं उसके पैसे आपको दे देता हूं। चुनाचे वो मालिक राजी हो गया तो दोनों के दरमियान अकद हुआ, गासिब ने पैसे दे दिए, गासिब उसका मालिक बन गया। अब देखो यहां पर गासिब का जो पहला कब्जा था वो कब्जा गसब वाला था और बाद में ये इस चीज का मालिक बन रहा है, बै कर रहा है, और बै के बाद जरूरी होता है कि इंसान मबीए पर कब्जा करे, लेकिन चूंकि ये चीज उसके कब्जे में पहले से मौजूद है तो यही पहला कब्जा दूसरे कब्जे की भी कायम मकाम हो जाएगा। तवज्जो है, कोई शख्स कोई चीज खरीदे तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस चीज पर कब्जा करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर पहला कब्जा जो गसब की वजह से है वही कायम मकाम हो जाएगा दूसरे कब्जे के। ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि भाई नया कब्जा जरूरी है, गासिब ये चीज वापस मालिक को दे, फिर मालिक अपने कब्जे में कर ले और फिर उसके बाद गासिब बै की वजह से दोबारा कब्जा करे। नहीं नहीं, दोबारा नए कब्जे की कोई जरूरत नहीं, वही पहला कब्जा दूसरे कब्जे के भी कायम मकाम हो जाएगा। मसला समझ में आ गया। इसी तरह शेखैन फरमाते हैं कि खावन ने जब पहली तलाक बीवी को दी तो बीवी उसके कब्जे में थी, वो उसके साथ सोहबत कर चुका है, जब बीवी से सोहबत कर ली मालूम हुआ बीवी उसके कब्जे में है, और फिर इसने तलाक दे दी, जब तलाक दे दी तो औरत इद्दत गुजार रही है और यह इद्दत भी किसका असर है, उसी पहले कब्जे का असर है, यह इद्दत भी किसका असर है, उसी पहले कब्जे का यानी पहले उस निकाह का असर है, तो गोया अभी भी कब्जा मौजूद है क्योंकि कब्जे का असर चल रहा है, और इस इद्दत के अंदर खावन ने दूसरा निकाह इस औरत से कर लिया अब क्योंकि तलाके बाइन दी थी, तो जब इसने दूसरा निकाह किया तो अब ये दूसरे निकाह के अंदर अभी तक इद्दत चल रही है, मालूम हुआ पहला कब्जा मौजूद है, तो वही कब्जा ये दूसरे कब्जे के भी कायम मकाम हो जाएगा। खावन सोहबत करें या ना करें, यूं समझेंगे बीवी खावन के कब्जे में है यानी सोहबत कर चुका है, जब सोहबत कर चुका है तो पूरा महर भी देना पड़ेगा और अब तलाक देगा तो पूरी नई इद्दत गुजारना पड़ेगी। मसला समझ में आ गया। वलहुमा शेखैन रहमहुल्लाह की दलील यह है कि अन्नहा मकबूज़तुन फी यदिही हकीकतन, कि ये औरत खावंद के कब्जे में है हकीकतन, बिल वत अतिल उला पहली वती की वजह से। शेखैन रहमहुल्लाह क्या फरमाते हैं, ये औरत पहली वती की वजह से ही खावंद के कब्जे में है, व बकिया असरुहू, और उस पहली वती का असर अभी भी बाकी है, वह हुआ इद्दतु, और वो इद्दत है। फैदा जद्दन निकाह, जब खावंद ने इसके साथ नया निकाह कर लिया, वही मकबूजतुन, और हाल यह है कि यह अभी भी मकबूजा है, इस पर अभी भी खावंद का कब्जा है क्योंकि इद्दत बाकी है भाई, ये उसी वती का असर है भाई। तो कहते हैं फैदा जद्दा निकाह, जब खावन ने इसे नया निकाह कर लिया, वह यह मकबूजतुन, और हाल यह है कि यह अब मकबूजा है, तो ना बजालिकल कब्ज अनिल कब्ज मुस्तहक फी हादन निकाह, तो ना बदालिकल कब्ज, तो वो जो पहला कब्जा था वो कायम मकाम हो जाएगा, अनिल कब्ज मुस्तहक, उस कब्जे से अल मुस्तहक जिसका इस्तेहकाक हुआ है, फी हादन निकाह इस निकाह में, तो वो जो पहला कब्जा है वो इस निकाह के कब्जे के कायम मकाम हो जाएगा। फिर तर्जमा देख लीजिए कि ना बजालिकल कब्ज अनिल कब्ज मुस्तहक फी हादन निकाही, तो वो जो पहला कब्जा है वो इस निकाह के की वजह से जिस कब्जे का इस्तेहकाक आया है ये उसका कायम मकाम हो जाएगा। कल गासिबी यश्तरिल मगसूबा, जैसे कि गसब करने वाला शख्स जो है वो खरीद ले अल मगसूबा, गसब की हुई चीज को, वो गसब की हुई चीज, अल्लदी फी यदिही, जो अभी इसी गासिब के कब्जे में है, तो यसीरु काबिज़न बिमुजर्रदिल अक़्दी, तो ये गासिब उस पर कब्जा करने वाला हो जाएगा महज़े अक़्द से ही, सिर्फ अक़्द करने से ही कब्जा करने वाला शुमार हो जाएगा, यानी पहला कब्जा दूसरे कब्जे के कायम मकाम हो जाएगा। फवज़ह बिहादा, तो यह बात इससे वाज़े हो गई कि अन्नहु तलाकुन बादद दुखूली, कि तलाक जो है सोहबत के बाद है, ये जो दूसरी तलाक है ये किसके बाद है, सोहबत के बाद है, क्योंकि पहला कब्जा दूसरे कब्जे के कायम मकाम हो गया। वकाल जुफर रहमहुल्लाह, और इमाम जुफर रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ला इद्दत अलैहा असला, कि इस औरत पर सिरे से कोई इद्दत है ही नहीं, इस औरत पर सिरे से कोई इद्दत है ही नहीं। इमाम जुफर फरमाते हैं कि खावन ने पहले तलाके बाइन दी थी, औरत इद्दत गुजार रही थी, फिर खावन ने ही दोबारा निकाह कर लिया तो पहली इद्दत खत्म, फिर खामन ने जब दोबारा तलाक दी तो वो बगैर सोहबत के तलाक दी है, लिहाजा उस तलाक की वजह से नई उस औरत पर इद्दत नहीं आएगी, और पहले वाली इद्दत भी खत्म हो चुकी, लिहाजा इस औरत पर सिरे से कोई इद्दत ही नहीं है भाई। تو کہتے ہیں وقال ظفر رحمہ اللہ، اور امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا عدت علیہ اصلا، کہ اس عورت پر سرے سے کوئی عدت ہی نہیں ہے، لأن الاولى قد سقطت بالتزوج، اس لیے کیونکہ پہلی عدت وہ ساقط ہو گئی ہے دوسرا نکاح کرنے کی وجہ سے، فلا تعود، تو وہ واپس نہیں لوٹے گی، والثانية لم تجب، اور دوسری عدت واجب ہی نہیں ہوئی کیونکہ اس نے صحبت ہی نہیں کی، وجوابہ ما قلنا، اور جواب اس کا وہ ہے جو ہم نے ذکر کر دیا اوپر، جی امام محمد رحمہ اللہ اور شیخین کے مذہب میں ذکر ہو گیا بھائی جواب سارا، جی آگے دیکھیے، وَإِذَا طَلَّقَ الزِّمِّيُّ الزِّمِّيَّةَ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَكَذَا إِذَا خَرَجَتِ الْحَرْبِيَّةُ إِلَيْنَا مُسْلِمَةً فَإِن تَزَوَّجَتْ جَازَ، صورت ہے مسئلہ یہ، ایک ذمی نے ذمیہ کو طلاق دی ہے تو کیا اس پر عدت آئے گی یا نہیں، اسی طرح ایک حربیہ ہے وہ مسلمان ہو کر دار الحرب آ گئی تو کیا اس پر عدت ہے یا نہیں، یہ مسئلے پہلے بھی ذکر ہو چکے بھائی، باب النکاح اہل شرک کے اندر آپ نے پڑھا تھا امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے، دیکھو وہ پھر ذرا سمجھ لیں، وہ پھر ذہن میں تازہ ہو جائیں گے تو یہ مسئلے فوراً آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے، امام صاحب کے نزدیک شرعی احکام غیر مسلموں پر لاگو نہیں ہوتے، جی امام صاحب کا مذہب کیا ہے، شرعی احکام غیر مسلموں پر لاگو نہیں ہوتے، لہذا ذمی اگر ذمیہ کو طلاق دیتا ہے اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ طلاق کے بعد عورت پر کوئی عدت نہیں ہوتی تو لہذا وہ عورت عدت کے اندر بھی جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، کیونکہ وہ غیر مسلم ہے ان پر اسلامی احکام لاگو نہیں ہوتے، اور خود ان کا اپنا بھی یہی عقیدہ ہے کہ عورت پر عدت نہیں ہوتی لہذا وہ آگے نکاح کرے گی وہ نکاح صحیح ہو جائے گا، اور بعد میں یہ دونوں مسلمان ہو گئے جس کے ساتھ عورت نے عدت میں نکاح کیا تھا تو امام صاحب فرماتے ہیں ان کو اسی نکاح پر برقرار رکھیں گے، اسی نکاح پر برقرار رکھیں گے کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق نکاح صحیح تھا بھائی، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں ان کا نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا، صاحبین فرماتے ہیں کہ ہمارے جو مسائل ہیں دین کے وہ دو قسم کے ہیں، کچھ مسائل متفق علیہ ہیں جس میں تمام فقہا کا اتفاق ہے اور کچھ مسائل اجتہادی ہیں جن کے اندر فقہا کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے، تو جو متفق علیہ یعنی یوں کہو اجماعی مسئلے ہوں گے ان کے اندر یہ غیر مسلموں پر بھی لاگو ہوں گے کیونکہ یہ ہمارے وطن میں رہتے ہیں، انہوں نے خود ہمارے قوانین اور احکام کو ماننے کا اپنے اوپر التزام کیا ہے، تو لہذا ذمی نے ذمیہ کو طلاق دے دی، اس عورت نے عدت کے اندر نکاح کر لیا، صاحبین فرماتے ہیں یہ نکاح جائز نہیں، لیکن ہم ان کو چھیڑیں گے نہیں، یہ نہیں کہیں گے کہ تم اب جدا ہو جاؤ نہیں، کیونکہ ہم نے ان سے عقد ذمہ کیا ہوا ہے تو یہ رہیں گے تو اسی طرح، البتہ ان کا یہ نکاح جائز نہیں، لہذا جیسے ہی یہ مسلمان ہوں گے قاضی جدائی کروائے گا تو اب نکاح دوبارہ کیا جائے گا شرعی ضابطے کے مطابق بھائی، تو معلوم ہوا امام صاحب کے نزدیک ذمیہ پر عدت نہیں ہوگی اگر ان کا یہی عقیدہ ہو، یہ قید ضرور یاد رکھنا، اگر ان کا یہی عقیدہ ہے کہ عورت پر عدت نہیں ہوتی تو امام صاحب فرماتے ہیں وہ شرعی احکام کے مکلف نہیں ہیں لہذا ان پر عدت نہیں، صاحبین فرماتے ہیں ان پر عدت ہے لیکن ہم ان کو چھیڑیں گے نہیں، ہاں اگر وہ مسلمان ہوئے یا انہوں نے مرافعہ کیا، مرافعہ ذکر ہوا تھا کہ قاضی کے پاس وہ آ گئے اسلامی حکم معلوم کرنے کہ ہمیں اسلامی حکم بتائیں ہم اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، مسلمان نہیں ہونا چاہتے ہم صرف اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اس کو مرافعہ کہتے ہیں، دیکھو دونوں قاضی کے پاس کوئی مقدمہ نہیں لے کر آئے صرف اسلامی حکم معلوم کرنے آئے ہیں، تو صاحبین فرماتے ہیں جب تک یہ اسلام نہیں لاتے یا یہ مرافعہ نہیں کرتے ہم ان کے معاملے میں دخل نہیں دیں گے اگرچہ یہ نکاح جائز نہیں، جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں یہ نکاح ہی جائز ہے، لہذا یہ مسلمان بھی ہو گئے تو اسی نکاح پر برقرار رکھا جائے گا، تو حاصل کلام کیا کہ امام صاحب کے نزدیک غیر مسلموں پر شرعی احکام لاگو نہیں، جبکہ صاحبین کے نزدیک غیر مسلموں پر اس شرعی احکام لازم ہیں جب وہ مملکت اسلامیہ میں رہتے ہیں، دار الحرب میں رہنے والوں پر تو ہمارا اختیار ہی نہیں ہے لیکن دار الاسلام کے اندر رہنے والوں پر شرعی قوانین لازم ہوں گے، البتہ اسلام یا مرافعہ سے قبل ہم ان کو چھیڑیں گے نہیں، ان کے معاملے میں دخل نہیں دیں گے، بات سمجھ میں آ گئی، اب صورت مسئلہ یہ، ایک ذمی نے ذمیہ کو طلاق دے دی تو کیا اس پر عدت ہے یا نہیں، امام صاحب فرماتے ہیں اگر ان کا عقیدہ ہے کہ عدت نہیں ہوتی تو عدت نہیں ہے،
اور صاحبین فرماتے ہیں کہ عورت پر عدت ہے. اسی طرح دوسرا مسئلہ صاحب ہدایہ یہاں یہ ذکر فرمائیں گے کہ ایک عورت دار الحرب سے مسلمان ہو کر آ گئی, اور آپ نے پڑھا تھا کہ جب تبایون دار پایا جائے, تبایون دار یعنی دونوں میاں بیوی الگ الگ ملکوں میں رہتے ہیں, خاوند دار الحرب میں ہے اور بیوی مسلمان ہو کر دار الاسلام آ گئی ہے, تو یہ تبایون دار ہے حقیقتاً بھی, حقیقتاً دونوں کا ملک الگ الگ ہے, اور تبایون دار حکمن بھی ہے یعنی حکم بھی تبایون دار کا لگایا جائے گا کیونکہ بیوی کا اب یہیں رہنے کا ارادہ ہے, واپسی کا ارادہ نہیں. تو عند الاحناف جب تبایون دار حقیقتاً بھی ہو اور حکمن بھی ہو تو پھر اس صورت میں میاں بیوی میں فوراً جدائی آ جاتی ہے, وہ عورت جیسے ہی مملکت اسلامیہ میں داخل ہوئی ساتھ ہی جدائی آ گئی. اب اس عورت پر کیا عدت ہے یا یہ فوراً نکاح کر سکتی ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں یہ فوراً نکاح کر سکتی ہے, صاحبین فرماتے ہیں نہیں, یہ مسلمان ہوئی ہے لہذا اس پر اسلامی احکام لاگو ہوں گے. جی دیکھیے بھائی تفصیل سمجھ میں آ گئی, اب یہی بیان فرمائیں گے بھائی. کہتے ہیں وَإِذَا طَلَّقَ ذِمِّيُّ ذِمِّيَّتَهُ, اور جب طلاق دے دی کسی ذمی نے کسی ذمیہ کو, یعنی وہ کافر جو دارالاسلام میں رہتے ہیں, تو جب ایک ذمی نے طلاق دے دی کسی ذمیہ کو, فلا عدت علیہا, تو اس عورت پر کوئی عدت نہیں ہے, یہ امام صاحب کے نزدیک. لیکن میں نے بتلایا کیا قید ضروری ہے کہ ان کا اپنا بھی یہی اعتقاد ہو. وَقَدَا اِذَا خَرَجَتِ الْحَرْبِيَّةُ إِلَيْنَا مُسْلِمَةً, اور اسی طرح ہے جب کوئی حربیہ ہماری طرف مسلمان ہو کر نکل آئے, فَإِن تَزَوَّجَتْ جَازَا, تو اگر اس نے نکاح کر لیا تو یہ جائز ہے. امام صاحب کے نزدیک یہ عورت فوراً نکاح کر سکتی ہے. إِلَّا أَن تَكُونَ حَامِلًا, مگر یہ کہ یہ عورت حاملہ ہو. اگر یہ جو حربیہ مسلمان ہو کر آئی ہے اگر یہ حاملہ ہے پھر اس کو نکاح کی اجازت نہیں, وضع حمل کے بعد نکاح کر سکتی ہے. تو کہتے ہیں الا ان تکون حاملا, مگر یہ کہ یہ عورت جو ہے حاملہ ہو. وہذا کلہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ, اور یہ سارا امام صاحب کے نزدیک ہے. وقالا, اور صاحبین فرماتے ہیں, علیہا وعلی ذمیت العدت, کہ یہ جو مہاجرہ ہے اور یہ جو ذمیہ ہے ان دونوں پر عدت ہے, یہ جو ہجرت کر کے آئی ہے اس پر اور ذمیہ جس کو ذمی نے طلاق دی ہے دونوں پر عدت ہے. تو وقالا, صاحبین فرماتے ہیں, علیہا وعلی ذمیت العدت, کہ اس عورت پر یہ جو ہجرت کر کے آئی ہے اور ذمیہ پر عدت ہے. اما ذمیت فالاختلاف فیہا نظیر الاختلاف فی نکاحہم محارمہم, جی صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں یہ جو ذمیہ کے مسئلے میں اختلاف ہے امام صاحب اور صاحبین کا, یہ اسی اختلاف کی طرح ہے وہ جو محارم کے ساتھ نکاح کی بات آئی تھی. بھئی محارم کے ساتھ نکاح, کوئی ذمی ہے وہ اپنی محرم کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے ماں بہن بیٹی وغیرہ سے, اور ان کے دین میں یہ جائز ہے, تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ ان کا یہ نکاح جائز ہے, جائز ہے کیونکہ وہ شریعت اسلامیہ کے مکلف نہیں. صاحبین فرماتے ہیں کہ بھائی ہم نے ضابطہ بتلا دیا کہ متفق علیہ احکام جو ہیں وہ ان پر بھی لازم ہیں, اجماعی احکام ان پر بھی لازم ہے, اور محرم کے ساتھ تو نکاح نہیں ہو سکتا, یہ اجماعی مسئلہ ہے تمام امت کا, لہذا یہ ان کا نکاح جائز نہیں. البتہ ہم دخل نہیں دیں گے ان کے نکاح میں کیونکہ ہم نے ان سے عہد ذمہ لیا ہوا ہے جب تک یہ مسلمان نہیں ہوتے یا مرافعہ نہیں کرتے قاضی کے پاس, تب تک ہم دخل نہیں دیں گے. تو امام صاحب بھی فرماتے ہیں دخل نہیں دیں گے, صاحبین بھی فرماتے ہیں دخل نہیں دیں گے, لیکن فرق اتنا ہے امام صاحب فرماتے ہیں ان کے لیے یہ نکاح ہی جائز ہے اور صاحبین کے نزدیک ان کے لیے یہ نکاح جائز نہیں ہے بھائی. تو کہتے ہیں فل اختلاف فیہا نظیر الاختلاف فی نکاحہم محارمہم, تو یہ جو ذمیہ ہے اس کے اندر جو اختلاف ہے وہ نظیر ہے اس اختلاف کی, فی نکاحہم محارمہم, یہ جو ذمیوں کا اپنے محرموں سے نکاح کرنا ہے جیسے اس کے اندر صاحبین اور امام صاحب کا اختلاف تھا, اسی طرح یہ ذمیہ کی عدت میں بھی اسی طرح اختلاف ہے. وقت بیناہ فی کتاب النکاح, اور تحقیق ہم اس کو بیان کر چکے ہیں کتاب النکاح کے اندر یعنی باب نکاح اہل شرک میں. وقول ابی حنیفہ رحمہ اللہ فیما اذا کان معتقدہم انہ لا عدت علیہا, میں نے آپ کو کیا بتلایا, امام صاحب کے نزدیک بھی یہ نکاح وغیرہ جائز ہوگا لیکن شرط کیا ہے کہ ان کا اپنا اعتقاد بھی یہی ہو یعنی ان کے دین میں بھی یہ جائز ہو. بھائی
तो कहते हैं वह कौल अबी हनीफा रहमला, और इमाम साहब का कौल जो है फी मा उस सूरत में है, इजा कान मोतकदहुम, जब उनका भी यह एतकाद हो कि अन्नहु ला इद्दत अलैहा, कि इस जिम्मिया पर इद्दत नहीं है। वह अमल मुहाजिरतु, और बाकी जो मुहाजिरा है जो हिजरत करके आई है, फवजहु कौलिहिमा, तो उसके अंदर साहिबैन के कौल की वजह यह है कि अनलफुर कतल वकात बिसबब आखरा, कि अगर इसकी जुदाई वाकई होती किसी और वजह से। ये जो औरत हिजरत करके दारुल इस्लाम में आई है, तो जैसे ही यह ममलिकत इस्लामिया में दाखिल हुई, तबायुन दार हकीकतन भी पाया गया और इसका इरादा ही यहीं रहने का है, तो तबायुन दार हुक्मन भी पाया गया, फौरन जुदाई वाकई हो गई भाई। तो वो फरमाते हैं कि अगर किसी और वजह से जुदाई आई होती तो इस औरत पर इद्दत लाजिम थी, तो तबायुन दार की वजह से जो जुदाई आई है उसकी वजह से भी इस औरत पर इद्दत वाजिब होगी, क्योंकि ये मुसलमान है, ये इस्लामी अहकाम इस पर लागू होंगे। तो कहते हैं वजह कौलिहिमा, तो साहिबैन के कौल की वजह यह है कि अन अलफुर कतल वकात भी सबब इन आखरा, कि अगर ये जुदाई जो इस औरत की मुहाजिरा की आई है अपने खावन से, लव वकात भी सबब इन आखरा, अगर ये जुदाई किसी और सबब से आती जैसे तलाक है या खावन की मौत वगैरह, तो वजबतिल इद्दतु, तो इस औरत पर इद्दत वाजिब होती, फकदा भी सबब तबायुनी, तो इसी तरह तबायुन दार के सबब से भी होगा, यानी यहां भी इद्दत वाजिब होगी। बेखिलाफ इमा इदा हाजर रजुल व तरकहा, बेखिलाफ इसके कि अगर आदमी हिजरत करके आ जाए, दारुल हर्ब से एक आदमी मुसलमान होकर दारुल इस्लाम में आ गया, बीवी उसकी वहीं पर है, तो यहां पर भी जैसे ही दारुल इस्लाम के अंदर यह दाखिल होगा तो फौरन निकाह खत्म हो जाएगा, क्योंकि तबायुन दार हकीकतन भी है और नीस हुक्मन भी है, क्योंकि उसका अब यहीं रहने का इरादा है। तो यहां भी जुदाई आ गई और इसकी बीवी जो दारुल हर्ब में है उस पर इद्दत वाजिब नहीं। साहिबैन फरमाते हैं उस पर इद्दत वाजिब नहीं। भाई आपने तो कहा था साहिबैन कि जो इजमाई मसला होगा वो गैर मुस्लिमों पर भी लाजिम होगा, तवज्जो है। तो इसका जवाब पहले गुजर चुका है भाई कि ये अगरचे इजमाई मसला है, क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वलील मुतल्लकात यतरब्बस नबी अनफुसिहिन न सलासत कुरु, तो तलाक हो या गैर तलाक दोनों का हुक्म एक ही है कि जब जुदाई आएगी तो तीन हैज गुजारने पड़ेंगे। लेकिन ये जो औरत दारुल हर्ब में रह गई है इस पर इद्दत साहिबैन भी फरमाते हैं वाजिब नहीं, क्योंकि कहते हैं कि वहां शरई अहकाम पहुंचे ही नहीं, वहां शरई अहकाम पहुंचे नहीं, उसको शरई हुक्म का पता ही नहीं है। वरना तो ये मुखातबा ये भी है हुजूर अलैहिस्सलाम की, ये भी उम्मत में से है और हुजूर अलैहिस्सलाम के अहकाम सब के लिए हैं, चाहे काफिर हो चाहे मुसलमान हो, तो ये भी मुखातबा तो है लेकिन वहां तक इस्लामी अहकाम पहुंचे नहीं, लिहाजा इसलिए इस पर इद्दत नहीं होगी। अगर दारुल इस्लाम में होती तो इस पर इद्दत वाजिब होनी थी, लेकिन हमने दखल नहीं देना था क्योंकि हमने इनसे क्या किया हुआ है, अकदे जिम्मा। तो कहते हैं बखिलाफ इमा इदा हाजर रजुलू व तरकहा, बखिलाफ इसके कि जब आदमी जो है वो हिजरत कर ले हमारी तरफ, व तरकहा और बीवी को वहीं छोड़ दे, ले आदम तबलीग अहकाम शरा के न पहुंचने की वजह से। वलहू, अब इमाम साहब की दलील आ गई। इमाम साहब क्या फरमाते थे, जिम्मिया पर भी इद्दत नहीं क्योंकि ये अहकाम शरिया के मुकल्लफ नहीं, और नीज मुहाजिरा पर भी इद्दत नहीं है। अब उसकी दलील जिक्र करने लगे हैं, कहते हैं वलहू इमाम साहब की दलील, कौलहू ताला, वल्लाह ताला का यह कौल है, ला जुनाह अलैकुम अन तनकिहू हुन्ना, कि ऐ मुसलमानों तुम पर कोई हरज नहीं है, यानी तुम पर कोई गुनाह नहीं है, अन तनकिहू हुन्ना, कि तुम इन हिजरत करने वालियों से निकाह कर लो। जो मुसलमान औरतें हिजरत करके आ जाएं तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है कि तुम उनसे निकाह कर लो। इमाम साहब की दलील चल रही है, इमाम साहब फरमाते हैं ये आयत मुतलक है, इसके अंदर कोई इद्दत की कैद नहीं, कि जो औरतें हिजरत करके आएं, ला जुनाह अलैकुम अन तनकिहुहुन्ना, तुम्हारे ऊपर कोई हरज नहीं है कि तुम इनसे निकाह कर लो। मालूम हुआ इन पर इद्दत नहीं है भाई, बात समझ में आ गई। और अगर आप हदीस के जरिए इस पर इद्दत बढ़ाएंगे तो खबर वाहिद के जरिए आप हिताबुल्ला पर ज्यादती नहीं कर सकते, खबर मशहूर हो
خبر مشہور کے ذریعے تو آپ کتاب اللہ پر زیادتی کر سکتے ہیں، لیکن خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی نہیں کر سکتے، معلوم ہوا اس عورت پر عدت نہیں ہے۔ اور نیز آگے عقلی دلیل بھی دے رہے ہیں صاحب ہدایہ امام صاحب کی طرف سے، کہتے ہیں ولی ان العدت حیث وجبت کان فیہا حق بنی آدم، کہتے ہیں اس لیے کیونکہ ولی ان العدت، اس لیے کیونکہ عدت جو ہے حیث وجبت جہاں بھی واجب ہوتی ہے، کان فیہا حق بنی آدم اس میں بنی آدم کا حق ہوتا ہے، یعنی انسان کا حق ہوتا ہے۔ بھئی دیکھو یہ جو عورت عدت گزارتی ہے یہ حق شرع بھی ہے، شریعت کا حکم ہے، نیز یہ اس بچے کا بھی حق ہے، ہو سکتا ہے یہ عورت کہیں حاملہ نہ ہو، بھئی یہ تو بچے کا نسب مشتبہ ہو جائے گا، تو یہ بچے کا بھی حق ہے، اور نیز یہ خاوند کا بھی حق ہے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو اس عورت کے پیٹ میں خاوند کی اولاد ہو، بھئی تو یہ حق شرع بھی ہے، حق ولد بھی ہے، اور حق زوج بھی ہے۔ بھائی تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ عدت جو واجب ہوتی ہے یہ خاوند کا حق ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہیں اس عورت کے پیٹ میں خاوند کی اولاد تو نہیں، کہیں یہ خاوند سے حاملہ تو نہیں۔ لیکن یہاں یہ جو عورت ہجرت کر کے آئی ہے یہ تو حربی کی بیوی تھی بھائی، اور حربی کی تو کوئی عزت اور احترام نہیں ہے، ان کے ساتھ تو ہم حالت جنگ میں ہیں بھائی، وہ تو ہمارے مسلمانوں میں سے کوئی قابو ان کے آ جائے اس کو پکڑ لیتے ہیں، اور مسلمانوں کا جو مال ان کے ہاتھ آ جائے وہ اس کو لوٹ لیتے ہیں، اسی طرح مسلمانوں کے ہاتھ بھی حربی آ جائے، مسلمان جنگ کرتے ہیں پکڑ لیتے ہیں ان کو غلام بنا لیتے ہیں، تو لہذا حربی کی کوئی عزت نہیں، جب حربی کی کوئی عزت نہیں ہے تو اس کی وجہ سے عورت پر عدت بھی واجب نہیں کی جائے گی۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی، کیونکہ عدت تو عورت پر خاوند کی عزت اور احترام اور اس کے حق کے طور پر واجب کی جاتی ہے، اور حربی کے تو کوئی عزت حق اور احترام نہیں ہے۔ بھائی تو کہتے ہیں ولی ان العدت حیث وجبت، اس لیے کیونکہ عدت جو ہے وہ جہاں واجب ہوتی ہے، کان فیہا حق بنی آدم تو اس کے اندر بنی آدم یعنی انسان کا حق ہوتا ہے، یعنی خاوند کا حق ہوتا ہے، والحربی یمل حق بالجمادی، اور حربی جو ہے اس کو تو ملایا گیا ہے بالجمادی بے جان چیزوں کے ساتھ۔ یاد رکھو یہ دنیا کے اندر چیزیں تین قسم پر ہیں، کچھ حیوانات ہیں، کچھ نباتات ہیں یعنی پودے وغیرہ، اور باقی چیزیں ہیں ان کو جمادات کہتے ہیں، حیوانات، نباتات اور جمادات۔ جمادات وہ چیزیں جن میں زندگی اور شعور وغیرہ نہیں ہے، بھائی یہ پتھر وغیرہ یہ چیزیں جو ہیں یہ سب کیا ہیں، یہ جمادات ہیں۔ تو کہتے ہیں والحربی یوم الحق بالجمادی، اور یہ حربی جو ہے اس کو تو ملایا گیا ہے بے جان چیزوں کے ساتھ، حتی کان محلا للتملک، یہاں تک کہ یہ محل ہے تملک کا، اس کا تو مالک ہوا جاتا ہے، اس کو تو پکڑ لیا جائے تو اس کو تو غلام بنا لیا جاتا ہے، تو اس کی کوئی عزت اور حرمت نہیں۔ تو کہتے ہیں حتی کان محلا للتملک، یہاں تک کہ یہ تو محل ہے کہ اس کا مالک ہوا جائے، الا ان تکون حاملا، ہاں مگر یہ کہ اگر وہ عورت حاملہ ہے، وہ جو ہجرت کر کے آئی ہے وہ حاملہ ہے، تو اس صورت میں جب تک وہ حمل کو جنم نہ دے دے اس وقت تک وہ نکاح نہیں کر سکتی۔ تو کہتے ہیں الا ان تکون حاملا، مگر یہ کہ وہ عورت حاملہ ہو، لان فی بطنها ولدا ثابتا النسب، اس لیے کیونکہ اس کے پیٹ میں ایسا بچہ ہے جو ثابت النسب ہے، یہ اس حربی کا بچہ ہے۔ تو جب اس عورت کے پیٹ میں ایسا حمل ہے جو ثابت النسب ہے، معلوم ہوا حمل کے اعتبار سے اس عورت کا فراش ہونا ظاہر ہے، حمل کے اعتبار سے یہ عورت کیا ہے، اس حربی کی فراش ہے، کیونکہ حدیث میں کیا آیا تھا الولد للفراشی، تو یہ بچہ بھی کس کا شمار ہوگا، اس حربی کا شمار ہوگا، تو یہ بچہ ثابت النسب ہے، توجہ ہے۔ تو جب یہ بچہ ثابت النسب ہے، یعنی بچے اور حمل کے اعتبار سے عورت فراش ہے، تو نکاح کے سلسلے میں بھی اس کو کیا سمجھا جائے گا، یہ ابھی تک اس کی فراش ہے، تو جب تک بچے کو جنم نہ دے دے اس سے نکاح کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہ مانا ہے لی ان فی بطنها ولدا ثابتا النسب، اس لیے کیونکہ اس کے پیٹ میں ایسا بچہ ہے جس کا نسب ثابت ہے۔ وعن ابی حنیفہ رحم اللہ، اور امام صاحب سے ایک روایت یہ ہے، انہ یجوز نکاحها ولا یطؤها، امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو مہاجرہ آئی ہے اور حاملہ ہے، تو امام صاحب سے ایک روایت یہ ہے کہ اسے نکاح جائز ہے، البتہ خاوند صحبت نہ کرے جب تک یہ عورت بچے کو جنم نہ دے دے۔ کہتے ہیں جیسے زنا والی، یاد رکھو کوئی عورت زنا سے حاملہ ہو گئی تو اس کے ساتھ نکاح جائز ہے، البتہ اسے صحبت نہیں کی جائے گی جب تک وہ بچے کو جنم نہ دے دے، کیونکہ حدیث میں منع آیا ہے کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ ہرگز غیر کی کھیتی کو سیراب نہ کرے۔ तो लिहाजा औरत जिना से हामिला है वहां निकाह जायज है, लेकिन जब तक वो वज़ए हमल ना हो जाए खावन सोहबत नहीं कर सकता। तो इमाम साहब का एक कौल यह है कि ये जो औरत है, ये जो हिजरत करके आई है और हामिला है, इसके अंदर भी निकाह जायज होगा, अलबत्ता खावन वज़ए हमल तक इसके साथ सोहबत न करे। तो कहते हैं वान अबी हनीफा तरहमल्ला, और इमाम साहब से एक रिवायत यह है कि अन्नहु यजूज़ु निकाहुहा, कि इसके साथ निकाह जायज है, वला यतउहा, और खावंद इसे सोहबत न करे, कल हुबला मिना जिना, जैसे कि वह औरत जो हामिला होती है जिना से, वल अव्वलु असहु, और पहला कौल ज्यादा सहीह है। साहिब हिदाया फरमा रहे हैं कि इमाम साहब का यह दूसरा कौल भी सही है, लेकिन पहला कौल ज्यादा सही है कि निकाह भी जायज नहीं। अगर मुहाजिरा हामिला है तो उसे निकाह भी जायज नहीं जब तक वज़ए हमल ना कर ले, तो यह पहला कौल ज्यादा सही है। वजह यह कि दोनों में फर्क है भाई, कि ये जो मुहाजिरा है इसका हमल साबितुन नसब है, और जो जिना से हामिला है उसका हमल तो साबितुन नसब नहीं है, लिहाजा दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। बात समझ में आ गई, हल हो गया। चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।